शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय एक। दाविद को शाऊल की मृत्यु की सूचना। शाऊल की मृत्यु हो चुकी थी और दाविद को अमालेकियों का संहार कर लौटे हुए 2 दिन व्यतीत हो चुके थे। तीसरे दिन शाऊल के शिविर से एक व्यक्ति वहां आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसके केशों में धूल समाई हुई थी। जब वह दाविद के निकट पहुंचा, उसने दंडवत हो उनका अभिवादन किया। दाविद ने उससे प्रश्न किया, कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इसराइली सेना के शिविर से बच निकल भागकर यहां पहुंचा हूं। दाविद ने उससे आगे पूछा, मुझे बताओ वहां स्थिति क्या है? उसने उत्तर दिया, इसराइली सेना पीठ दिखाकर भागी है, अनेक सैनिक घायल हुए और अनेक मारे गए हैं। शाऊल और उनके पुत्र योनातन भी युद्ध में मारे गए। दाविद ने उस संदेशवाहक युवक से प्रश्न किया, तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि शाऊल और योनातन की मृत्यु हो चुकी है? उस सूचना देने वाले युवक ने उन्हें बताया, संयोगवश में उस समय गिलबोआ पर्वत पर ही था। वहां मैंने देखा कि शाऊल अपने भाले पर झुके हुए थे, घुड़सवार और रथ उनकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने मुड़कर मेरी ओर देखा और मुझे पुकारा। मैंने उनसे कहा, आज्ञा दीजिए। उन्होंने ही मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं अमालेकी हूं। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे निकट आकर मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। मेरी मृत्यु की पीड़ा असहनीय हो रही है, परंतु मेरे प्राण निकल नहीं रहे। तब मैं उनके निकट गया और उन पर वार कर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि यह स्पष्ट ही थी कि भाले पर गिरने के बाद उनका जीवित रहना असंभव था। फिर मैंने उनका मुकुट उनके सिर से उठाया, उनकी बाह से उनका कंगन निकाला और अपने स्वामी के लिए उन्हें ले आया हूं। तब दाविद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उन्हें फाड़ दिया और यही उनके सभी साथियों ने भी किया। शाऊल उनके पुत्र योनातन और तलवार से घात किए गए यहावे की प्रजा और इसराइल वंश के लिए वे सांझ तक विलाप करते रहे और उन्होंने उपवास किया। दाविद ने उस युवक से जो समाचार लाया था पूछा, कहाँ के हो तुम? और उसने उन्हें उत्तर दिया था, मैं एक विदेशी की संतान हूँ, एक अमालेकी। दाविद ने इस युवक से प्रश्न किया, यहावे के अभिषिक्त पर हाथ उठाते हुए तुम्हें भय क्यों न लगा? दाविद ने अपने एक युवा साथी को बुलाकर उससे कहा, जाकर उसे समाप्त कर दो। तब उस साथी ने अमालेकी पर वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। दाविद ने कहा, तुम्हारा रक्त दोष तुम्हारे ही सिर पर है, क्योंकि स्वयं तुमने यह कहते हुए अपने मुख से अपने ही विरुद्ध गवाही दी है, मैंने यहावे के अभिषिक्त की हत्या की है। शाऊल के लिए दाविद का शोक गीत। दाविद ने शाऊल और उनके पुत्र योनातन के लिए यह शोक गीत गाया और उन्होंने यह आदेश प्रसारित किया कि यह गीत सारे यहूदिया वासियों को सिखाया जाए। यह गीत याशर के ग्रंथ में अंकित है। इसराइल, तुम्हारा गौरव तुम्हारे ही उच्च स्थानों पर घात किया गया है, कैसे पराक्रमी गिर पड़े हैं। इसका उल्लेख गात में ना किया जाए, इसका उल्लेख अश्कलोन की गलियों में भी ना किया जाए। ऐसा ना हो कि फिलिस्तीनियों की पुत्रियां इस पर उल्लास मनाने लगे, ऐसा ना हो कि अखतनीतों की पुत्रियां हर्षित होने लगे। गिलबोआ के पर्वतों, तुम पर ना तो ओस पड़े और ना बारिश, तुम पर उपजाऊ खेत भी ना हो, क्योंकि इसी स्थान पर शूर योद्धा की ढाल दूषित की गई, शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। घात किए हुओं की रक्त से, शूरवीरों की चर्बी से योनातन का धनुष कभी खाली ना लौटा, वैसे ही शाऊल की तलवार का वार कभी विफल नहीं हुआ। शाऊल और योनातन अपने जीवन काल में प्रिय और आकर्षक थे, मृत्यु में भी वे विभक्त नहीं हुए। उनमें गरुड़ों सदृश तेज गति और सिंहों सदृश बल था। इसराइल की पुत्रियों, शाऊल के लिए विलाप करो, जिन्होंने तुम्हें भव्य बैंगनी वस्त्र पहनाए, जिन्होंने वस्त्रों के अलावा तुम्हें सोने के आभूषण भी दिए। शूर कैसे घात किए गए युद्ध में तुम्हारे उच्च स्थल पर योनातन मृत पड़ा है। योनातन मेरे भाई, तुम्हारे लिए मैं शोकाकुल हूँ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय थे। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम नारी के प्रेम से कहीं अधिक मधुर था, कैसे शूर मिट गए, कैसे युद्ध के हथियार नष्ट हो गए। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। दाविद का यहूदिया के राजा के रूप में अभिषेक। इसके बाद दाविद ने यहावे से यह पूछा, क्या यहूदिया के किसी नगर को मेरा जाना सही होगा? यहावे ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। दाविद ने पूछा, कौन सा नगर उपयुक्त होगा? हेब्रोन, यहावे ने उत्तर दिया। तब दाविद वहां चले गए, उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां, येज्रील की अहिनोअम और कर्मेलवासी नाबाल की विधवा अबीगैल भी थी। तब दाविद अपने साथियों के साथ जाकर हेब्रोन में बस गए। हर एक के साथ उसका घर परिवार भी था। यहूदिया प्रदेश के वासियों ने आकर यहूदा गोत्र के लिए दाविद का राज अभिषेक किया। जब दाविद को यह सूचित किया गया कि शाऊल की अंत्येष्टि याबेश गिलादवासियों के द्वारा की गई थी, दाविद ने याबेश गिलादवासियों को अपने संदेशवाहकों द्वारा यह संदेश प्रेषित किया, आप पर यहावे की विशेष कृपा दृष्टि बने रहे, क्योंकि आपने अपने स्वामी शाऊल के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते हुए उनकी अंत्येष्टि की है। आप पर यहावे का निर्जर प्रेम और उनकी सत्य निष्ठा बने रहे। तुम्हारे इस सद्भाव के लिए स्वयं मैं तुम पर दया प्रदर्शित करूंगा। अब जबकि तुम्हारे स्वामी शाऊल की मृत्यु हो चुकी है और यहूदा गोत्र ने मेरा राज अभिषेक किया है, तुम्हारी भुजाएं बलशाली बनी रहे और तुम में शौर्य कम ना होने पाए। इसराइल राज्य के लिए इशबोशेत की प्रतिष्ठा। मगर दूसरी ओर नेर के पुत्र अबनेर ने, जो शाऊल की सेना के सेनापति था, शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को महानाइम नगर ले जाकर उसे गिलाद अशूरवासियों, येज्रील, एफ्राइम, बिन्यामीन और संपूर्ण इसराइल के ऊपर राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इसराइल पर शासन प्रारंभ करते समय ईशबोशेत की अवस्था 40 वर्ष की थी। उसका शासनकाल 2 वर्ष का था। मगर यहूदा गोत्र दाविद के वफादार बना रहे। हेब्रोन में यहूदा गोत्र के ऊपर दाविद का शासनकाल 7 वर्ष 6 महीने का था। इस समय नेर के पुत्र अबनेर शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के सेवकों को लेकर महानाइम से गिबियोन को चले गए। दूसरी ओर जेरुइया के पुत्र योआब के सेवकों की भेंट उनसे गिबियोन ताल के निकट हुई। दोनों समूह तल के एक एक ओर बैठ गए। अबनेर ने योआब से कहा, हमारे ये युवा आगे बढ़े और हमारे सामने इनकी स्पर्धा हो जाए। योआब सहमत हो गए, ठीक है, वे आगे बढ़े। तब युवा आगे आते गए और उनकी गणना की जाती रही। शाऊल के पुत्र ईशबोशेत और बिन्यामीन के पक्ष से 12 और दाविद के पक्ष से भी 12 युवक सामने आए। हर एक ने अपनी प्रतिद्वंदी का सिर पकड़ा और अपने प्रतिद्वंदी की पसली में तलवार झोंक दी। परिणाम स्वरूप वे एक साथ ही धराशाही हुए। इसके कारण गिबियोन नगर में उस स्थान का नाम हेलकात हजूरीम पड़ गया। उस दिन युद्ध ने अत्यंत रौद्र रूप ले लिया और दाविद के युवकों द्वारा अबनेर और इसराइल के युवक हरा दिए गए। जेरुइया के तीनों पुत्र इस समूह में शामिल थे, योआब, अबिशाई और आसाहेल। आसाहेल मरुभूमि की हिरनी जैसा ही तेजी से दौड़ता था। उसने अबनेर का पीछा करना शुरू कर दिया। अबनेर का पीछा करते हुए वह ना तो बाएं मुड़ा ना दाएं। आसाहेल को अपने पीछे आते देखकर अबनेर ने उससे पूछा, क्या तुम आसाहेल हो? जी हाँ, उसने उत्तर दिया। अबनेर ने उससे कहा, अपने दाएं तथा बाएं मुड़कर जो भी युवक पकड़ में आए उससे लूट की सामग्री छीन लो। मगर आसाहेल ने अबनेर का पीछा करना ना छोड़ा। अबनेर ने आसाहेल को पुनः आदेश दिया, मेरा पीछा करना छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर वार करके तुम्हें धराशाही कर दूं। तब मैं तुम्हारे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखा सकूंगा? फिर भी उसने अबनेर का पीछा ना छोड़ा। यह देख अबनेर ने अपने भाले के कुंदे से आसाहेल के पेट पर वार किया। भाला आर पार हो गया। आसाहेल वहीं धराशाही हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वे सभी जो उस स्थान से होकर जा रहे थे जहां आसाहेल की मृत्यु हुई थी, स्थिर खड़े हो गए। मगर योआब और अबीशाई अब्नेर का पीछा करते रहे। सूर्यास्त बेला में वे अम्माहा पहाड़ी पर जा पहुंचे। यह पहाड़ी गिबियोन की मरुभूमि के मार्ग पर गिया नामक स्थान के पूर्व पड़ती है। बिन्यामीन वासी एकजुट होकर अब्नेर के पीछे खड़े हो गए। इससे अब वे एक समूह हो गए थे। इन सभी ने पहाड़ी के ऊपर अपना मोर्चा लिया। तब अब्नेर ने योआब से कहा, क्या तलवार का वार कभी ना थमेगा? क्या तुम यह नहीं समझ रहे कि इससे अंत में कड़वाहट ही हाथ लगेगी? अब और कितनी देर लगाओगे अपने साथियों को आदेश देने में कि वे अपने ही भाई बंधुओं का पीछा करना छोड़ दें? योआब ने उत्तर दिया, परमेश्वर की शपथ, यदि आपने यह सब ना कहा होता तो हमारे साथी अपने भाई बंधुओं का पीछा बिना रुके सुबह तक करते रहते। योआब ने तुरही फूंकी और उसके साथियों ने पीछा करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने ना तो इसराइलियों का पीछा किया और ना उनसे युद्ध ही किया। अब्नेर और उनके साथियों ने सारी रात चलकर आराभा पार किया। उन्होंने यर्दन नदी को पार किया और दिन के शुरू के घंटों में चलते हुए वे महानाइम जा पहुंचे। योआब अब्नेर का पीछा करना छोड़ लौट गए। और जब वे सब एकत्र हुए तब यह मालूम हुआ कि दाविद के सेवकों में से आसाहेल के अलावा 19 व्यक्ति लौटकर नहीं आए थे। मगर दाविद के इस दल ने बिन्यामीन के 360 व्यक्तियों का संहार कर दिया जो अब्नेर के साथ थे। आसाहेल के शव को उसके पिता की कब्र में रख दिया गया। यह कब्र बेथलेम में थी। योआब और उनके साथी सारी रात यात्रा करते रहे। जब वे हेब्रोन पहुंचे तब भोर हो ही रही थी। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 3। शाऊल के वंश और दाविद के वंश के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। दाविद धीरे धीरे मजबूत होते चले गए और शाऊल का वंश लगातार दुर्बल होता चला गया। हेब्रोन वास के समय दाविद को ये पुत्र पैदा हुए। उनका पहलौठा था अम्मोन, जो येज्रील वासी अहिनोअम से पैदा हुआ था। उनका दूसरा पुत्र था किलियाब, जो कार्मेल वासी नाबाल की विधवा पत्नी अबीगैल से पैदा हुआ था। उनका तीसरा पुत्र था अबशालोम, जो गेशूर के राजा तालमाई की पुत्री माखा से पैदा हुआ था। उनका चौथा पुत्र था अदोनिया, जिसकी माता थी हेगीत। पांचवा पुत्र था शेपाथिया, जिसकी माता थी अबिताल। छठा पुत्र इथ्रियाम था, जिसकी माता थी दाविद की पत्नी एगला। ये सभी दाविद के हेब्रोन में रहते हुए पैदा हुए थे। अब्नेर की दाविद के प्रति वफादारी। जब शाऊल और दाविद के वंश के बीच संघर्ष चल रहा था, अब्नेर स्वयं को शाऊल के परिवार ही में अपना स्थान सशक्त बनाए जा रहा था। शाऊल की रिज्पा नामक एक उपपत्नी थी, जो अय्या की पुत्री थी। ईशबोशेत ने अब्नेर का सामना करते हुए पूछा, तुमने मेरे पिता की उपपत्नी से संबंध क्यों बनाया है? ईशबोशेत के इन शब्दों को सुन अब्नेर को बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने ईशबोशेत को उत्तर दिया, क्या मैं यहूदिया के किसी कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तुम्हारे पिता शाऊल के परिवार, उनके भाइयों और उनके मित्रों के प्रति पूरी तरह सच्चा रहा हूँ, और मैं तुम्हें दाविद के अधीन होने से बचाता रहा हूँ, और आज तुम मुझ पर इस स्त्री से संबंधित अपराध का आरोप लगा रहे हो। अब यदि मैं अब्नेर, दान से बेशरबा तक फैले हुए शाऊल वंश के राज्य दाविद को दिए जाने और दाविद के इसराइल और यहूदिया पर सिंहासन की प्रतिष्ठा मिलने को, जिसकी शपथ यहावे द्वारा ली गई थी, पूरी ना करूं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी बढ़कर करे। यह सुन ईशबोशेत अब्नेर से एक शब्द तक ना कह सका, क्योंकि वह अब्नेर से डरता था। अब्नेर ने दाविद के पास इस संदेश के साथ अपने दूत भेजे, कौन है इस भूमि का स्वामी? मुझसे वाचा बांध लीजिए और तब देखिएगा कि मैं अपने प्रभाव से सारे इसराइल को आपकी अधीनता में ला दूंगा। दाविद ने उन्हें उत्तर में यह संदेश भेजा, बहुत बढ़िया, मैं आपसे वाचा जरूर बांधूंगा, मगर एक ही शर्त पर, आप जब मुझसे भेंट करने आए आप शाऊल की पुत्री मीखल को अपने साथ लाए, नहीं आप मेरा मुख ना देख सकेंगे। इसके बाद दाविद ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास इस संदेश के साथ संदेशवाहक भेजे, मुझे मेरी पत्नी मीखल दे दो, जिसके साथ मेरा रिश्ता फिलिस्तीनियों की एक सोलिंग की खालों का मूल्य चुकता करने के द्वारा हुआ था। ईशबोशेत ने उसे उसके पति लाइश के पुत्र पालतियेल के पास से छीनकर दाविद के पास भेजी। इस पर उसका पति सारे रास्ते रोता हुआ उसके साथ साथ बहुरीम तक जा पहुंचा। उसे देख अब्नेर ने उसे आदेश दिया, जाओ अपने घर लौट जाओ। तब वह अपने घर लौट गया। अब्नेर ने इसराइल के पुरनियों की सभा आयोजित की और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, बीते वर्षों से आपकी यह इच्छा रही है कि दाविद आप पर राजा होकर शासन करे, अब यही हो जाने दीजिए, क्योंकि यहावे ने दाविद से यह प्रतिज्ञा की है, मैं अपने सेवक दाविद के बाहुबल से फिलिस्तीनियों के अधिकार से और सारे शत्रुओं से अपनी प्रजा इसराइल को छुड़ाऊंगा। अब्नेर ने बिन्यामीन गोत्र के लोगों से भी इस विषय का उल्लेख किया। इसके बाद अब्नेर हेब्रोन नगर में दाविद को यह बताने गया कि सारे इसराइली और सारे बिन्यामीन गोत्र के लोगों के मत में अब क्या करना सही है। जब अब्नेर 20 व्यक्तियों के साथ दाविद से भेंट करने हेब्रोन पहुंचे, दाविद ने अब्नेर और उन 20 व्यक्तियों के लिए एक भोज तैयार किया। अब्नेर ने दाविद से कहा, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर सारे इसराइल को अपने स्वामी जो राजा है उनके सामने इकट्ठा करूं, कि वे आपसे वाचा स्थापित कर सकें कि आप उन पर अपनी इच्छा अनुसार उन सभी पर शासन कर सकें। तब दाविद ने अब्नेर को इसके लिए विदा किया और अब्नेर वहां से पूरी शांति से चले गए। योआब द्वारा अब्नेर की हत्या। ठीक उसी समय योआब के साथ दाविद के सेवक छापा मार करके लौट रहे थे, उनके पास लूटी गई सामग्री भी थी। उस समय अब्नेर दाविद के पास हेब्रोन नगर में नहीं थे, क्योंकि दाविद उसे विदा कर चुके थे। योआब और उनकी सारी सेना उनके साथ वहां लौटी। तब उन्हें सूचना इस प्रकार दी गई थी, नेर के पुत्र अब्नेर राजा से भेंट करने आए थे, राजा ने उन्हें पूरी शांति में लौटा दिया है। यह सुन योआब ने राजा के पास जाकर कहा, यह आपने क्या कर डाला है? जब अब्नेर आपके पास आया था आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, और अब वह आपके हाथ से बच निकला है। इतना तो आप समझते हैं कि नेर का पुत्र अब्नेर आपसे छल करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। वह यहाँ आया था कि आपकी हर एक गतिविधि का भेद ले ले। दाविद की उपस्थिति से बाहर आकर योआब ने अब्नेर के पीछे अपने दूत दौड़ा दिए, जो अब्नेर को सीरा के कुंड के निकट से लौटा लाया, मगर दाविद को इसका कोई ज्ञान ना था। जब अब्नेर हेब्रोन पहुंचे, प्रवेश द्वारा के निकट योआब ने उन्हें अलग ले जाकर कुछ ऐसा दिखाया कि मानो वह उन्हें कोई गुप्त संदेश देना चाह रहे थे। उस स्थिति ही में योआब ने उनके पेट में घातक वार किया। योआब ने यह हत्या उसके भाई आसाहेल की हत्या का बदला लेने के लिए की। जब दाविद को इस घटना के विषय में मालूम हुआ, उनके वचन थे, नेर के पुत्र अब्नेर के वध के विषय में यहावे के सामने मैं और मेरा राज्य हमेशा निर्दोष रहेंगे। इसका दोष योआब और उसके कुल पर पड़े, वे स्राव रोग से कभी मुक्त ना हो, उसके पिता के कुल में कोढ़ी बने रहे और बैसाखी का उपयोग करने वाले हमेशा रहे, उसके कुल के पुरुष तलवार से घात किए जाए, उसके कुल में भोजन का अभाव बना रहे। योआब और उनका भाई अभिशाई अब्नेर की हत्या के दोषी थे। यह इसलिए कि अब्नेर ने गिबियोन के युद्ध में आसाहेल का वध किया था। इसके बाद राजा दाविद ने योआब और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आदेश दिया, अपने वस्त्र फाड़ दो, शोक वस्त्र पहन लो और अब्नेर के लिए विलाप करो। राजा दाविद अर्थी के पीछे पीछे गए। उन्होंने अब्नेर को हेब्रोन ही में गाड़ दिया। राजा ऊंची आवाज में रोते हुए अब्नेर की कब्र के पास खड़े रहे। वहां उपस्थित सभी लोग भी रोए। राजा ने अब्नेर के लिए इन शब्दों में शोक गीत गाया, क्या सही था कि अब्नेर की मृत्यु ऐसी हो। जैसी एक मूर्ख की। अब्नेर, ना तो तुम्हारे हाथ बांधे गए थे और ना पाँव में बेड़ियां डाली गई थी, फिर भी तुम्हारी मृत्यु ऐसी हुई जैसी किसी दुष्ट की। एक बार फिर लोग अब्नेर के शोक में रोने लगे। इसके बाद सभी लोग आकर दाविद से विनती करने लगे कि वह सूर्यास्त के पहले भोजन कर ले, मगर दाविद ने शपथ लेते हुए कहा, परमेश्वर मेरे साथ यही मगर इससे भी ज्यादा करे यदि मैं सूर्यास्त के पहले भोजन का सिर्फ स्वाद भी चख लूं। यह विषय सभी के ज्ञान में आ गया और इससे सभी प्रसन्न हुए। वस्तुतः राजा जो कुछ करते थे उससे सभी लोग प्रसन्न ही होते थे। उस दिन इज़राइल के सभी लोगों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि राजा की यह इच्छा कभी ना थी कि नेर के पुत्र अब्नेर की हत्या की जाए। तब राजा ने अपने सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप लोग नहीं समझ रहे कि इज़राइल ने आज एक प्रशासक और एक असाधारण व्यक्ति खो दिया है? अभिषिक्त राजा होने पर भी आज मैं स्वयं को दुर्बल पा रहा हूँ। मेरे लिए जेरुया के पुत्र बड़ी समस्या बन गए हैं। यहावे ही इन दुष्टों को उनके कुकर्मों के लिए सही बदला दे। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 4। ईश-बोशेत का वध। अब्नेर की मृत्यु का समाचार सुनकर ईश-बोशेत का साहस जाता रहा और सारे इज़राइल में निराशा छा गई। शाऊल के पुत्र के छापामार दलों के दो प्रधान थे, बाना और रेखाब। ये दोनों बिन्यामीन प्रदेश के बैरोथ नगरवासी रिमोन नामक व्यक्ति के पुत्र थे। बीरोथ नगर बिन्यामीन प्रदेश का हिस्सा माना जाता था। बीरोथ वासियों को पलायन कर गिताइम नगर में जा बसना पड़ा और वे वहां आज तक परदेशी ही माने जाते हैं। शाऊल के पुत्र योनातन के एक पुत्र था जो पैरों से विकलांग था। जब येज़रील से शाऊल और योनातन से संबंधित समाचार उन्हें दिया गया, वह सिर्फ 5 वर्ष का था। उसकी सेविका उसे लेकर भाग रही थी। उतावली में वह गिर पड़ा और विकलांग रह गया। उसका नाम मेफीबोशेत था। बेरोथवासी रिमोन के दोनों पुत्रों रेखाब और बाना ने यात्रा प्रारंभ की और वे ईश-बोशेत के आवास पर उस समय जा पहुंचे जब दिन की गर्मी के समय ईश-बोशेत विश्राम कर रहा था। वे भवन के बीच वाले कमरे में कुछ इस ढंग से जा पहुंचे मानो वे वहां गेहूं लेने आए थे। वहां उन्होंने ईश-बोशेत के पेट में वार कर दिया। यह करके रेखाब और उसका भाई बाहना भाग निकले। जब उन्होंने भवन में प्रवेश किया, ईश-बोशेत अपने कमरे में बिछोने पर लेटे हुए थे। उन्होंने उन पर वार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने उनका सिर काट लिया और उसे लेकर वे सारी रात अराबा मार्ग पर चलते रहे। ईश-बोशेत के सिर को लेकर दाविद के पास हेब्रोन जा पहुंचे और उन्हें यह सूचना दी, यह देखिए, आपके शत्रु शाऊल के पुत्र ईश-बोशेत का सिर, जो आपके प्राणों के प्यासे रहे थे, अब आज यहावे ने राजा मेरे स्वामी को शाऊल और उनके वंशजों का बदला दे दिया है। दाविद ने बीरोथवासी रिमोन के पुत्रों रेखाब और उसके भाई बाना को उत्तर दिया, जीवित यहावे की शपथ, जिन्होंने मेरे जीवन को सभी पीड़ाओं से छुड़ाया है, जब उस व्यक्ति ने आकर मुझे सूचना दी, सुनिए, शाऊल की मृत्यु हो चुकी है। वह यह समझ रहा था कि वह मेरे लिए शुभ संदेश लेकर आया है। मैंने उसे पकड़ा और उसका वध कर दिया। यह ज़िकलाग की घटना है। उसके द्वारा लाए गए समाचार का इनाम मैंने उसे इस रीति से दिया था। अब यह विचार करो कि और कितनी अधिक होगी वह प्रतिक्रिया जब दुष्ट व्यक्तियों ने एक धर्मी व्यक्ति की हत्या उसके घर में जाकर उसके बिछोने पर की है। क्या सही नहीं कि उसके रक्त का बदला तुम्ही से लेकर तुम्हें पृथ्वी पर से मिटा दूं? तब दाविद ने युवाओं को आदेश दिया और उन्होंने उन दोनों की हत्या कर दी। उनके हाथ और पांव काटकर उनके शव हेब्रोन के ताल के निकट लटका दिए। मगर उन्होंने ईश-बोशेत के सिर को हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 5। संपूर्ण इज़राइल पर दाविद का राज अभिषेक। इसके बाद इसराइल के सारे गोत्र हेब्रोन में दाविद से भेंट करने आए और उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा, विचार कीजिए, हम आप ही की अस्थि और मांस है। पिछले सालों में जब राजा तो शाऊल थे, किंतु ये आप ही थे जो हमारा मार्गदर्शन और इसराइली सेना को चलाते रहे। यहावे ने आपसे कहा था, तुम मेरी प्रजा इसराइल के चरवाहे होगे, तुम मेरी प्रजा इसराइल के शासक होगे। अतः इसराइल के सारे प्राचीन हेब्रोन नगर में राजा के सामने इकट्ठा हुए। दाविद ने यहावे के सामने उनसे वाचा बांधी। तत्पश्चात उन्होंने इसराइल के लिए दाविद का राज अभिषेक किया। शासन प्रारंभ करते समय दाविद की आयु 30 वर्ष की थी और उन्होंने 40 वर्ष शासन किया। उन्होंने हेब्रोन में रहते हुए यहूदिया पर 7 वर्ष 6 माह शासन किया और यरूशलेम में उन्होंने संपूर्ण इसराइल और यहूदिया पर 33 वर्ष शासन किया। दाविद की यरूशलेम पर जीत। राजा ने अपनी सेना के साथ यरूशलेम जाकर उस देश के निवासी यबूसियों पर आक्रमण किया। यबूसियों ने दाऊद को संदेश भेजा, तुम तो यहाँ प्रवेश भी ना कर सकोगे, तुम्हें तो हमारे अंधे और लंगड़े ही पछाड़ देंगे। उनका विचार था, दाविद के लिए यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है। फिर भी दाविद ने जियोन गढ़ पर अधिकार कर लिया। अब यह दाविद के नगर के नाम से प्रख्यात हो गया है। उस अवसर पर दाविद ने अपने लोगों से कहा, यदि तुम लोग यबूसियों को हराना चाहते हो तो जल सुरंग से जाओ और उन अंधों तथा विकलांगों पर हमला करो। यही कारण है कि लोग कहते हैं, अंधों और विकलांग को राजनिवास में प्रवेश निषेध है। दाविद ने गढ़ पर अधिकार कर लिया और उसे दाविद नगर नाम दिया। दाविद ने मिल्लो से प्रारंभ कर इसके चारों ओर भीतर की ओर नगर का निर्माण किया। दाविद पर सर्वशक्तिमान यहावे परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, इसलिए दाविद धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। इसके बाद सोर के राजा हीराम ने दाविद के पास अपने दूत भेजे, जो दाविद के घर को बनाने के लिए अपने साथ देवदार की लकड़ी, बढ़ई और राजमिस्त्री भी ले आए। इससे दाविद को यह एहसास हो गया कि यहावे ने उन्हें इसराइल के राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है और यह भी कि यहावे ने अपनी प्रजा इसराइल के हित में अपने राज्य को उन्नत किया है। हेब्रोन से यरूशलेम आकर बसने पर दाविद और भी उपपत्नियां और पत्नियां ले आए। उनको और भी संतान पैदा हुई। यरूशलेम में पैदा उनकी संतान के नाम ये हैं, शमुआ, शोबाब, नाथान, शलोमोन, इबहार, एलिशुआ, नेफेग, याफिया, एलिशामा, एलियादा और एलिफेलेत। फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध। जब फिलिस्तीनियों को यह मालूम हुआ कि दाविद का राज अभिषेक इसराइल के राजा के रूप में किया गया है, सभी फिलिस्तीनी दाविद की खोज में निकल पड़े। मगर जैसे ही दाविद ने इसके विषय में सुना, वह गढ़ में चले गए। इस समय फिलिस्तीनी आकर रेफाइम घाटी में फैल गए। इस पर दाविद ने यहावे से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों पर आक्रमण करूं? क्या आप उन्हें मेरे अधीन कर देंगे? यहावे ने दाविद को उत्तर दिया, जाओ, क्योंकि मैं फिलिस्तीनियों को निश्चित ही तुम्हारे अधीन कर दूंगा। दाविद बाल पेराजीम नामक स्थान पर पहुंचे और वहां फिलिस्तीनियों को हरा दिया। वहां दाविद ने यह घोषित किया, यहावे मेरे पहले ही वहां पहुंचकर मेरे शत्रुओं पर कुछ ऐसे टूट पड़े जैसे बहुत से जल का बहाव। इस पर उस स्थान का नाम पड़ गया बाल पेराजीम। फिलिस्तीनी अपनी मूर्तियां वहीं छोड़कर भागे, जिन्हें दाविद और उनके साथी उठाकर ले गए। एक बार फिर फिलिस्तीनी आए और रेफाइम घाटी में फैल गए। जब दाविद ने यहावे से इस विषय में पूछा, यहावे ने उन्हें उत्तर दिया, तुम सीधे जाकर उन पर हमला ना करना, बल्कि तुम घूमकर उनके पीछे जाकर मोखा वृक्षों की ओर से हमला करना। हमला उस समय सही होगा जब तुम्हें मोखा के पेड़ों के ऊपर से सेना की चहल कदमी सुनाई देने लगे। तब तुम युद्ध शुरू कर देना, क्योंकि उस समय यहावे तुम्हारे आगे आगे फिलिस्तीनी सेना को मारते हुए बढ़ रहे होंगे। दाविद ने वैसा ही किया जैसा यहावे ने आदेश दिया था। उन्होंने गिबियोन से लेकर गेजेर तक फिलिस्तीनियों को मार गिराया। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 6। पवित्र संदूक का यरूशलेम लाया जाना। कुछ समय बाद दाविद ने इज़राइल से वीर युवाओं को चुना, जिनकी संख्या 30,000 पाई गई। दाविद और उनके साथ के सभी व्यक्ति यहूदिया में बाला के लिए निकले कि वे वहां से परमेश्वर के संदूक, जिसकी पहचान सेनाओं के यहावे के नाम के द्वारा होती है, जो करूबों पर विराजमान है, उन्होंने परमेश्वर के संदूक को एक नई गाड़ी पर रख दिया। उन्होंने संदूक को पहाड़ी पर बने अबीनादाब के घर से इस रीति से लाया। इस नए वाहन को अबीनादाब के पुत्र उज्जा और आहियो चला रहे थे, और परमेश्वर के संदूक के साथ आहियो आगे आगे चल रहा था। इसी समय दाविद और सारा इज़राइल वंश यहावे के सामने सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू और झांझ के साथ आनंद मना रहे थे। जब वे नाकोन के खलियान पर पहुंचे, बैलों के लड़खड़ाने के कारण उज्जा ने परमेश्वर के संदूक की ओर हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। इस पर उज्जा पर यहावे का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने उस पर इस बात के कारण वहीं वार किया, उसकी मृत्यु वहीं परमेश्वर के संदूक के निकट हो गई। उज्जा पर यहावे के इस क्रोध पर दाविद को गुस्सा हो गया। वह स्थान आज तक पेरेस उज्जा नाम से जाना जाता है। उस दिन दाविद यहावे से डर गए। वह विचार करने लगे, यह कैसे संभव है कि यहावे का संदूक मेरे यहाँ आए। तब दाविद ने यहावे के संदूक को दाविद नगर में लाना ना चाहा, बल्कि उन्होंने संदूक को अलग ले जाकर गातवासी ओबेद एदोम के घर में रखवा दिया। तब यहावे का संदूक गातवासी ओबेद एदोम के आवास में 3 महीने रखा रहा। यहावे की कृपा दृष्टि ओबेद एदोम के सारे परिवार पर बनी रही। दाविद राजा को तब यह सूचना दी गई, परमेश्वर के संदूक के कारण यहावे ने ओबेद एदोम के परिवार और उनकी संपत्ति पर आशीषों की बारिश की है। दाविद गए और ओबेद एदोम के घर से परमेश्वर का संदूक बड़े हर्ष के साथ दाविद के नगर में ले आए। जब यहावे के संदूक को उठाने वाले 6 कदम आगे बढ़े, दाविद ने 1 बैल और 1 हष्ट-पुष्ट पशु की बलि चढ़ाई। इस समय मलमल का वस्त्र धारण किए हुए उल्लसित दाविद यहावे के सामने पूरे मन से नाचने में लीन थे। जब यहावे का संदूक दाविद और संपूर्ण इज़राइल द्वारा लाया जा रहा था, लोग नरसिंगे फूंकने के साथ खुशी से चिल्ला रहे थे। जब यहावे का संदूक दाविद राजा के नगर में प्रवेश हो रहा था, शाऊल की पुत्री मीखल ने खिड़की के बाहर दृष्टि की। जब यहावे का संदूक दाविद राजा के नगर में प्रवेश की, तो यह देखा कि राजा दाविद यहावे के सामने उछलते हुए नाच रहे थे। यह देख उसका हृदय दाविद के प्रति घृणा से भर गया। उन्होंने यहावे के संदूक को लाकर उस तंबू, जिसे दाविद ने उसके लिए विशेष रूप से बनवाया था, उसके भीतर संदूक के लिए निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दिया। इसके बाद दाविद ने यहावे को अग्निबलि और मेल बलि चढ़ाई। जब दाविद अग्निबलि और मेल बलि चढ़ा चुके, उन्होंने प्रजा के सेनाओं के यहावे के नाम में आशीर्वाद दिए। इसके बाद उन्होंने सब लोगों में, पूरे इसराइली जन समूह में, स्त्री और पुरुष हर एक को एक एक रोटी, मांस का 1 अंश और किशमिश की 1 टिक्की बांट दी। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जब दाविद अपने परिवार को आशीर्वाद देने लौटे, तो शाऊल की पुत्री मीखल दाविद से भेंट करने के लिए आई। उसने दाविद से कहा, कैसा देखने लायक था आज इज़राइल के राजा का वैभव। वह एक बेशर्म मूर्ख के समान अपने सेवकों की दासियों के सामने नंगा हुआ जा रहा था। दाविद ने मीखल को उत्तर दिया, यह तो यहावे के सामने हो रहा था, जिन्होंने मुझे तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे परिवार की अपेक्षा इज़राइल का शासक बनाना सही समझा। यहावे के सामने मैं और भी नाचूंगा, और मैं तो यहावे के लिए अपने आप को तुम्हारी दृष्टि में और भी अधिक घृणित बना लूंगा, अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाऊंगा। मगर जिन दासियों का तुमने उल्लेख किया है उनकी दृष्टि में तो मैं सम्मानित ही रहूंगा। मृत्यु होने तक शाऊल की पुत्री मीखल बांझ ही रही। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 7। दाविद से परमेश्वर का करारनामा। जब राजा अपने महल में बस गया और यहावे ने उन्हें उनके सभी शत्रुओं से शांति प्रदान कर दी, राजा ने भविष्यद्वक्ता नाथान पर अपनी यह इच्छा प्रकट की, अब विचार कीजिए, मैं तो देवदार से बने भव्य घर में निवास कर रहा हूं, जबकि परमेश्वर का संदूक तंबू और पर्दों में। नाथान ने राजा को उत्तर दिया, आप वह सब कीजिए जो आपने अपने मन में विचार किया है, क्योंकि यहावे आपके साथ हैं। उसी रात यहावे का वचन नाथान को प्राप्त हुआ, मेरे सेवक दाविद से जाकर यह कहना, यहावे का कथन है, क्या तुम ही वह हो जो मेरे रहने के लिए भवन बनाएगा? जब से मैंने इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला है आज तक मैं किसी भवन में नहीं रहा हूं। हाँ, मैं तंबू मेरा निवास बनाकर रहता आया हूं। जिधर जिधर इसराइल के साथ मैं फिरा, क्या मैंने इसराइल के किसी शासक से, जिसे मैंने अपनी प्रजा के चरवाहा नियुक्त किया था, कभी कहा, तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ी का घर क्यों नहीं बनाया? तब तुमने अब मेरे सेवक दाविद से यह कहना होगा, सेनाओं के यहावे का वचन है, मैंने ही तुम्हें चरागाह से, भेड़ों के चरवाहों के पद पर से इसलिए चुना कि तुम्हें अपनी प्रजा इसराइल का शासक बनाऊं। तुम जहां कहीं गए मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे सामने से तुम्हारे सारे शत्रुओं को मैंने मार गिराया। मैं तुम्हारे नाम को ऐसा बड़ा करूंगा जैसा पृथ्वी पर महान लोगों का होता है। अपनी प्रजा इसराइल के लिए मैं एक जगह तय करूंगा, मैं उन्हें वहां बसाऊंगा कि वे वहां अपने ही घरों में रह सके और उन्हें वहां से चलाया ना जाए, और कोई भी दुष्ट व्यक्ति उन्हें पहले के समान परेशान ना करे। जैसे वे मेरे द्वारा उत्पीड़ित किए जाते थे, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी शत्रुओं से शांति दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे लिए यहावे की यह घोषणा है कि यहावे तुम्हारे वंश परंपरा को स्थिर करेंगे। जब तुम्हारी आयु के निर्धारित दिन पूर्ण हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ चिर निद्रा में सो जाओगे, मैं तुम्हारी संतान को तुम्हारे बाद पल्लवित करूंगा, जो तुम्हारी ही देह से उत्पन्न होगा। मैं उसके साम्राज्य को प्रतिष्ठित करूंगा, वही मेरी प्रतिष्ठा में भवन बनाएगा। मैं उसका राज सिंहासन चिर स्थायी करूंगा, उसका पिता मैं बन जाऊंगा और वह हो जाएगा मेरा पुत्र। जब उससे कोई अपराध होगा, मैं उसे मनुष्यों की रीति पर छड़ी से अनुशासित करूंगा, वैसे ही जैसे मनुष्य अपनी संतान को प्रताड़ित करते हैं। मगर उसके प्रति मेरा अपार प्रेम कभी कमजोर ना होगा, जैसा शाऊल से मेरा प्रेम जाता रहा था, जिसे मैंने ही तुम्हारे पद से हटा दिया। तुम्हारा वंश और तुम्हारा साम्राज्य निश्चित मेरे सामने सदा स्थायी रहेगा, तुम्हारा सिंहासन हमेशा प्रतिष्ठित बना रहेगा। नाथान ने अपने दर्शन और यहावे के संदेश के अनुसार दाविद को सब कुछ बता दिया। दाविद की प्रार्थना। तब राजा दाविद जाकर यहावे के सामने बैठ गए। वहां उनके हृदय से निकले वचन ये थे, प्रभु यहावे, कौन हूं मैं और क्या है मेरे परिवार का पद कि आप मुझे इस जगह तक ले आए हैं? और प्रभु यहावे, मानो यह आपकी दृष्टि में पर्याप्त नहीं था, आपने मेरे वंशजों के दूर के भविष्य के विषय में भी प्रतिज्ञा कर दी है। प्रभु परमेश्वर, यह सब केवल मिट्टी मात्र मनुष्य के लिए। दाविद इसके अलावा आपसे और क्या विनती कर सकता है, क्योंकि प्रभु यहावे, आप अपने सेवक को जानते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के कारण और अपनी योजना के अनुसार आपने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि आपके सेवक को आश्वासन मिल सके। इसलिए प्रभु यहावे, आप ऐसे महान हैं, कोई भी नहीं है आपके तुल्य। हमने जो कुछ अपने कानों से सुना है उसके अनुसार कोई भी परमेश्वर नहीं है आपके अलावा। इसी प्रकार कौन है आपकी प्रजा इसराइल के तुल्य? पृथ्वी पर एक जनता जिसे स्वयं परमेश्वर ने जाकर इसलिए छुड़ाया कि वे उनकी प्रजा हो, कि इसमें आपकी प्रतिष्ठा हो। आपने अपनी प्रजा के सामने से अन्य राष्ट्रों को निकाल दिया, उसी प्रजा के सामने से जिसे आपने मिस्र देश की बंधनों से विमुक्त किया है, कि वे इन राष्ट्रों और विदेशी देवताओं को छोड़ आपकी प्रजा हो। आपने अपने ही लिए अपनी प्रजा इसराइल को प्रतिष्ठित किया है कि वे सदा सर्वदा के लिए आपकी प्रजा रहे, और तब यहावे आप उनके परमेश्वर हो गए। और अब यहावे परमेश्वर अपने सेवक और उसके वंश के विषय में कहे गए वचन को हमेशा के लिए प्रतिष्ठित कर दीजिए, और जो कुछ आपने कहा है उन्हें पूरा कीजिए। आपकी महिमा के लिए यह हमेशा के लिए किया जाता रहेगा। आपके विषय में कहा जाएगा, सर्वशक्तिमान यहावे ही इसराइल के परमेश्वर है। आपके सामने आपके सेवक दाविद का राजवंश हमेशा स्थायी रहेगा। यह इसलिए कि सर्वशक्तिमान यहावे आपने इसराइल के परमेश्वर ही ने अपने सेवक पर इन शब्दों में यह प्रकाशित किया है, मैं तुम्हारे वंश को प्रतिष्ठित करूंगा। इसी बात के प्रकाश में आपके सेवक को इस प्रकार की प्रार्थना करने का साहस प्राप्त हुआ है। प्रभु यहावे, आप परमेश्वर हैं। आपके मुख से निकले शब्द सत्य है। आपने अपने सेवक से यह असाधारण प्रतिज्ञा की है। तब आपके सेवक के वंश पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखने में आप प्रभु यहावे की संतुष्टि हो, कि यह वंश आपके सामने हमेशा आगे ही बढ़ता जाए, क्योंकि यह आपने ही कहा है। आपके आशीर्वाद से आपके सेवक का वंश हमेशा के लिए आशीषित हो जाए। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 8। दाविद के अभियान। कुछ समय बाद दाविद ने फिलिस्तीनियों को युद्ध में हराया और फिलिस्तीनियों के कब्जे के प्रमुख नगर का नियंत्रण उनसे छीन लिया। दाविद ने मोआबियों को भी हराया, उन्हें भूमि पर लिटाकर एक डोर से उन्हें मापा। तब दो पंक्तियों का वध किया जाने का और एक पंक्ति को सजीव रखने का आदेश दिया। इससे मोआबी दाविद के सेवक हो गए और उन्हें शुल्क देने लगे। जब जोबा के राजा रेहोब के पुत्र हदेजर फरात नदी पर अपने अधिकार की पुनः स्थापना कर रहे थे, दाविद ने उसको भी हराया। दाविद ने हदेजर से 1000 रथ, 7000 घुड़सवार और 20000 पैदल सैनिक छीन लिए और रथों के घोड़ों के पैरों की प्रमुख नस काट दी, किंतु 100 रथों में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त घोड़ों को छोड़ दिया। जब जोबा के राजा हदेजर की सहायता के लिए दमिश्क से अरामी वहां आए, दाविद ने 22000 अरामियों को मार दिया। दाविद ने दमिश्क के अरामी सैनिकों के बीच एक रक्षक सेना ठहरा दी। अरामी दाविद के सेवक बन गए और उन्हें कर देने लगे। दाविद जहां कहीं गए उन्हें यहावे की सहायता मिलती रही। हदेजर के सेवकों की सोने की ढालों को दाविद ने लाकर यरूशलेम में रख दिया। हदेजर के दोनों नगर बेथा और बेरोथाई से राजा दाविद ने बड़ी मात्रा इकट्ठा किया। जब हामात के राजा तोव ने यह सुना कि दाविद ने हदेजर की संपूर्ण सेना को हरा दिया, तो उन्हें अपने पुत्र योराम को राजा दाविद से भेंट करने भेजा, ताकि वह राजा दाविद के स्वास्थ्य के बारे में मालूम करे और उनको बधाई दे, क्योंकि दाविद ने हदेजर को हरा दिया जो हमेशा तोव से युद्ध करता रहता था। योराम अपने साथ सोना, चांदी और कांसे की वस्तुएं भी लाया था। राजा दाविद ने सोना, चांदी और कांसे की इन सभी वस्तुओं को उन वस्तुओं के साथ यहावे को समर्पित कर दी जो वह उन सभी पराजित देशों यानी एदोम, मोआब, अम्मोन के वंशजों, फिलिस्तीनियों और अमालेकियों और जोबा के पुत्र राजा हदेजर से कब्जा किए गए थे। नमक की घाटी में 18000 एदोमियों का संहार कर लौटने पर दाविद ने अपनी कीर्ति व्यापक कर ली। इसके बाद दाविद ने संपूर्ण एदोम राष्ट्र में गढ़ रक्षक सेनाएं बना दी। सभी एदोम वासी दाविद के अधीन हो गए। दाविद जहां कहीं हमला करते थे यहावे की ओर से उन्हें सफलता ही प्राप्त होती थी। दाविद के अधिकारी। दाविद सारे इसराइल के शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए न्याय और सच्चाई की व्यवस्था की थी। जेरुया के पुत्र योआब सेना पर अधीक्षक था और अहिलूद के पुत्र यहोशाफात था लेखापाल। अहितूब के पुत्र सादोक और अबियाथर के पुत्र अहीमेलेक पुरोहित थे और सेराइया उनका सचिव था। यहोयादा के पुत्र बेनाहिया केरीथी और पेलेत के निवासियों के प्रधान थे और दाविद के पुत्र प्रशासनिक सलाहकार थे। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 9। मेफीबोशेत के प्रति दाविद की अनुकंपा। दाविद ने पूछताछ की, क्या शाऊल के वंशजों में से अब भी कोई बचा रह गया है कि मैं योनातन से की गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उस पर कृपा प्रदर्शित कर सकूं? शाऊल के परिवार की परिचर्या के उद्देश्य से एक सेवक रखा गया था जिसका नाम ज़ीबा था। उसे ही दाविद से भेंट करने के लिए बुलवाया गया। राजा ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम ही ज़ीबा हो? जी हाँ, मैं आपका सेवक ज़ीबा हूँ, उसने उत्तर दिया। इस पर राजा ने इससे आगे प्रश्न किया, क्या शाऊल के वंश में अब कोई भी शेष ना रहा जिस पर मैं परमेश्वर की दया दिखा सकूं? ज़ीबा ने उन्हें उत्तर दिया, योनातन का एक पुत्र जरूर जीवित है, दोनों ही पैरों से वह अपंग है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? ज़ीबा ने राजा को उत्तर दिया, इस समय वह लो देबार में अमीएल के पुत्र माखीर के आवास में है। तब राजा दाविद ने लो देबार में अमीएल के पुत्र माखीर के आवास से मेफीबोशेत को बुलवा लिया। शाऊल के पुत्र योनातन का पुत्र मेफीबोशेत ने आकर भूमि पर मुख के बल गिरकर दाविद को नमस्कार किया। दाविद ने उसे संबोधित किया, मेफीबोशेत। उसने उत्तर दिया, आजी मैं आपका सेवक हूँ। दाविद ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत, तुम्हारे पिता योनातन के कारण तुम पर कृपा करूँगा और तुम्हारे पितामह शाऊल की सारी भूमि तुम्हें लौटा दूंगा। इसके अलावा अब से तुम नियमित रूप से मेरे साथ मेरी ही मेज पर भोजन किया करोगे। एक बार फिर मेफीबोशेत दंडवत हो गया। उसने कहा, आपका सेवक है ही क्या जो आप मुझ जैसे मरे हुए कुत्ते की ओर ध्यान दें? इसके बाद राजा ने ज़ीबा शाऊल के सेवक को यह सूचित किया, वह सब जो शाऊल और उनके परिवार का है मैंने तुम्हारे स्वामी के पोते को दे दिया है। यह तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे सेवक उनके लिए इस भूमि पर खेती करें और उपज उत्पन्न करें और उन्हें सौंपे कि तुम्हारे स्वामी के पोते के पर्याप्त भोजन रहे। मगर मेफीबोशेत तुम्हारे स्वामी का पोता हमेशा मेरे साथ भोजन करता रहेगा। ज़ीबा के 15 पुत्र और 20 सेवक थे। ज़ीबा ने राजा से कहा, जैसा राजा मेरे स्वामी ने आदेश दिया है आपका सेवक वैसा ही करेगा। तब मेफीबोशेत दाविद के साथ राजा के पुत्रों के समान भोजन करने लगा। मेफीबोशेत का मीका नाम एक पुत्र था, एक बालक। वे सभी जो ज़ीबा के घर में रहते थे मेफीबोशेत के सेवक बन गए। तब मेफीबोशेत यरूशलेम में निवास करने लगा क्योंकि वह सदैव राजा के साथ भोजन किया करता था। वह दोनों पैरों से अपंग था। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 10। अम्मोन और सीरिया पर दाविद की विजय। इसके बाद अम्मोनियों के राजा की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसका पुत्र हानून शासन करने लगा। दाविद ने यह निश्चय किया, मैं नाहाश के पुत्र हानून पर दया दिखाऊंगा ठीक जिस प्रकार उसके पिता ने मुझ पर दया की थी। तब दाविद ने अपने कुछ सेवकों को उसके पास उसके पिता के विषय में शांति देने भेजा। मगर जब दाविद के सेवक अम्मोनियों के देश पहुंचे, अम्मोनियों के मंत्रियों ने अपने स्वामी हानून से कहा, क्या आप समझ रहे हैं कि इन सांत्वना के लिए भेजे गए व्यक्तियों को भेजकर दाविद आपके पिता के प्रति श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा है? दाविद ने ये व्यक्ति नगर का भेद लेने भेजे हैं कि हमारा भेद लेकर उसे तहस नहस कर दें। यह सुन हानून ने दाविद के सेवकों को ले जाकर हर एक की आधी आधी दाढ़ी मुंडवा दी, उनके कपड़े बीच में नितंबों तक काट दिए और उन्हें इसी रूप में विदा कर दिया। जब दाविद को इसकी सूचना दी गई, उन्होंने उन सेवकों को उस सुझाव के साथ बुलवा लिया, आकर यरीखो में उस समय तक ठहरे रहना, जब तक तुम्हारी दाढ़ी बढ़ न जाए, तब तुम यहाँ लौट सकते हो, क्योंकि वे इस समय बहुत ही शर्म महसूस कर रहे थे। जब अम्मोनियों को यह पता चला कि वे दाविद के लिए अप्रिय हो गए हैं, तब अम्मोनियों ने भाड़े पर आराम के बेथ रिहोब और जोबा से 20,000 पद सैनिक, माका के राजा के साथ 1,000 सैनिक और तोब से 12,000 सैनिक मंगवा लिए। जब दाविद को इसका समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने योआब के साथ वीर योद्धाओं की सारी सेना वहां भेज दी। अम्मोनियों ने आकर नगर फाटक पर मोर्चा बना लिया, जबकि जोबा और रेहोब के, अरामी और तोब और माका के सैनिक स्वतंत्र रूप से मैदान में ही रहे। जब योआब ने यह देखा कि उनके विरुद्ध युद्ध छिड़ चुका है, सामने से और पीछे से भी, उन्होंने इसराइल के सर्वोत्तम योद्धा अलग किए और उन्हें अरामियों का सामना करने के लिए चुन दिया। शेष सैनिकों को योआब ने अपने भाई अभिशाई के नेतृत्व में छोड़ दिया कि वे अम्मोनियों का सामना करें। योआब के स्पष्ट निर्देश थे, यदि तुम्हें यह लगे कि अरामी मुझ पर हावी हो रहे हैं, तब तुम मेरी सहायता के लिए आ जाना, मगर यदि अम्मोनी तुम पर प्रबल होने लगे, तब मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। साहस बनाए रखो, हम अपने परमेश्वर के नगरों के लिए और अपने देशवासियों के लिए साहस का प्रदर्शन करें कि यहावे वह कर सके जो उनकी दृष्टि में सही है। योआब और उनके साथ के सैनिकों ने अशूरियों पर हमला किया और अरामी उनके सामने से भाग खड़े हुए। जब अम्मोनियों ने यह देखा कि अरामी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, अम्मोनी भी अभिशाई के समक्ष से भागकर अपने नगर में जा छिपे। योआब अम्मोनियों से युद्ध करने के बाद यरूशलेम लौट गए। जब अशूरियों ने यह देखा कि उन्हें इसराइल से हार का सामना करना पड़ा है, वे आपस में एकजुट हो गए। हादेजर ने उन अशूरियों को बुला लिया जो फरात नदी के पार बसे हुए थे। ये सब हालेम नामक स्थान पर इकट्ठा हो गए। उनका सेनापति था हादेजर की सेना का आदेशक शोबाक। जब दाविद को इसकी सूचना दी गई, वह सारी इजरायली सेना को इकट्ठा कर यर्दन के पार हालेम पहुंच गए। अरामियों ने दाविद के विरुद्ध मोर्चा बांधकर उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। अरामी इसराइलियों के सामने पीठ दिखाकर भागने लगे। दाविद ने अरामी सेना के 700 रथ सैनिक, 40,000 घुड़सवार मार गिराए और उनकी सेना के आदेशक शोबाक को घायल कर दिया। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जब हादेजर के सभी जागीरदारों ने यह देखा कि वे इसराइल द्वारा हरा दिया गया है, उन्होंने इसराइल से संधि कर ली और इसराइल के अधीन हो गए। इसके बाद अम्मोनियों की सहायता करने में अरामी झिझकने लगे। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 11। दाविद का गंभीर पाप। जब वसंत काल में राजा लोग युद्ध करने निकलते थे, दाविद ने योआब उनके अधीनस्थ अधिकारियों और सारे इजरायली सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। उन्होंने अम्मोनियों का नाश कर दिया और रब्बा पर अधिकार कर लिया, मगर दाविद यरूशलेम में ही रह गए थे। एक दिन शाम के समय में जब दाविद अपने बिछोने से उठकर राजमहल की छत पर टहल रहे थे, वहां से उन्हें स्नान करती हुई एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। दाविद ने किसी को भेजकर यह मालूम करवाया कि वह स्त्री कौन थी। उन्हें सूचित किया गया, वह एलियाम की पुत्री बैतशेबा है, इत्ती उरिया की पत्नी। दाविद ने दूतों को भेजकर उसे बुलवा लिया। इस समय वह अपने स्त्री धर्म से शुद्ध हो चुकी थी। वह दाविद के पास आ गई और दाविद ने उसके साथ संबंध बनाया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। वह गर्भवती हो गई। उसने दाविद को यह संदेश भेजा, मैं गर्भवती हो गई हूँ। यह मालूम होने पर दाविद ने योआब को यह संदेश भेजा, हित्ती उरिया को यहां भेज दो। योआब ने उरिया को दाविद के पास भेज दिया। जब उरिया दाविद के सामने उपस्थित हुआ, दाविद ने उससे योआब का हालचाल मालूम किया, सैनिकों और युद्ध की स्थिति भी मालूम की। उसके बाद दाविद ने उरिया को आदेश दिया, अब तुम अपने घर चले जाओ। राजा की ओर से उसके पीछे पीछे उसके लिए उपहार भी भेजा गया। मगर उरिया राजमहल के द्वार के निकट ही उसके स्वामियों के सभी सेवकों के सोने के स्थान पर सो गया और वह अपने घर नहीं गया। जब दाविद को यह बताया गया, उरिया तो अपने घर गया ही नहीं। दाविद ने उरिया से पूछा, तुम यात्रा से लौटे हो तो तुम अपने घर क्यों नहीं गए? उरिया ने उन्हें उत्तर दिया, संदूक इज़राइल और यहूदिया की सेना मैदान में तंबू में ठहरे हुए हैं, और योआब मेरे स्वामी और मेरे स्वामी के सैनिक मैदान में शिविर डाले हुए हैं। तब क्या यह मेरे लिए सही है कि मैं अपने घर जाऊं और खा पीकर अपनी पत्नी के साथ सो जाऊं? आपकी और आपके प्राणों की शपथ, मुझसे वह सब हो ही नहीं सकता। यह सुन दाविद ने उससे कहा, आज भी यहां ठहरो, मैं तुम्हें कल विदा कर दूंगा। तब उरिया यरूशलेम में एक दिन और ठहर गया। तब दाविद ने उसे आमंत्रित किया, उसने दाविद के साथ भोजन किया और दाविद उसे मदोन्मत्त होने तक दाख मधु पिलाई। संध्या काल में उरिया वहां से निकलकर अपने स्वामी के सेवकों के लिए निर्धारित स्थान पर अपने बिछौने पर जाकर सो गया, मगर अपने घर नहीं गया। प्रातः दाविद ने योआब को एक पत्र लिखा और उसे उरिया के हाथ से भेज दिया। दाविद ने पत्र में लिखा था, उरिया को ऐसे मोर्चे पर भेज दो जहां युद्ध सबसे तेज हो, और फिर उसे वहां अकेला छोड़ पीछे हट जाना कि उस पर शत्रुओं का वार हो और वहीं उसकी मृत्यु हो जाए। जब योआब नगर पर घेरा डाल रहे थे, उन्हें मालूम था कि किस स्थान पर शत्रु के सबसे अधिक बलवान सैनिक युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने उरिया को उसी स्थान पर युद्ध करने के लिए आदेश दिया। नगर के शूर योद्धा योआब से युद्ध करने निकल आए। दाविद के कुछ सैनिक इस हमले से घात किए गए, हित्ती उरिया भी इसमें मारा गया। योआब ने दाविद को युद्ध का विस्तृत समाचार भेज दिया। योआब ने दूत को ये विशेष निर्देश दिए, जब तुम राजा को युद्ध का विस्तृत लेखा दे चुको, तब यदि राजा गुस्सा होते दिखे और यदि वह तुमसे पूछे, तुम लोग युद्ध करते हुए नगर के इतने निकट क्यों जा पहुंचे थे, क्या तुम्हें इतनी भी बुद्धि ना थी कि वे लोग तुम पर शहर पना से बांध चलाएंगे? येरूब बाशेत का पुत्र अबीमेलेक किसके वार से मारा गया था? क्या एक स्त्री ने ही उस पर शहर पना से चक्की का ऊपरी पार्ट नहीं फेंका था? क्या वह तेबेज में इसी प्रकार मारा नहीं गया था? तुम लोग शहर पना के इतने निकट गए ही क्यों? तब तुम्हें उत्तर देना होगा, महाराज, इसी में आपके सेवक हित्ती उरिया की भी मृत्यु हो गई है। तब दूत चला गया, उसने आकर दाविद को वह सब सुना दिया जिसे सुनाने का आदेश उसे योआब ने दिया था। दूत ने दाविद से कहा, शत्रु सैनिक हम पर प्रबल हो गए थे, वे हम पर हमला करने मैदान तक आ गए, मगर हमने उन्हें नगर प्रवेश तक धकेल दिया। इसके बाद धनुर्धारियों ने शहर पना से हमारी सेना पर बाणों की बौछार कर दी। राजा के कुछ सैनिक इसमें मारे गए, उन्हीं में आपका सेवक हित्ती उरिया भी था। दाविद ने दूत को यह आदेश दिया, तुम्हें जाकर योआब से यह कहना होगा, तुम इस बात से उदास ना होना, क्योंकि तलवार तो किसी को आज मारती है तो किसी को कल। इस नगर पर अपना हमला और अधिक प्रबल कर दो कि नगर नष्ट कर दिया जाए। तुम यह कहकर योआब को प्रोत्साहित कर देना। जब उरिया की पत्नी को यह मालूम हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह अपने पति के लिए रोने लगी। जब विलाप के लिए निर्धारित अवधि पूरी हो गई, दाविद ने उसे अपने पास बुलवा लिया कि वह उसकी पत्नी बन जाए, मगर दाविद के इस काम ने यहावे को अप्रसन्न कर दिया। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 12। नाथान की फटकार। फिर यहावे ने नाथान को दाविद के पास भेजा। नाथान ने आकर दाविद से कहा, किसी नगर में दो व्यक्ति थे, एक धनी और दूसरा निर्धन। धनी व्यक्ति अनेक पशुओं और भेड़ों का स्वामी था, जिसे उसने मोल ले लिया था। मगर निर्धन के पास सिर्फ एक ही छोटी भेड़ थी, जिसे उसने मोल लिया था, और वह उसका पालन पोषण कर रहा था। यह भेड़ उसके बालकों के साथ ही बड़ी हो रही थी। वह उसी व्यक्ति के साथ भोजन करती थी, उसी के प्याले से पीती थी और उसके साथ बिछोने में सोया करती थी। वह उसके लिए उसकी पुत्री समान थी। उस धनी के पास एक यात्री आया हुआ था। उस धनिक ने उस यात्री के सत्कार के लिए अपनी भेड़ों में से कोई भेड़ ना ली, बल्कि उस निर्धन की भेड़ लेकर उस यात्री के लिए भोजन तैयार कर लिया। यह सुनते ही उस धनी व्यक्ति के प्रति दाविद का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने नाथान से कहा, जीवित यहावे की शपथ, जिस व्यक्ति ने यह किया है मृत्यु दंड के योग्य है, इसलिए कि उसने ऐसा किया है, इसलिए कि वह ऐसा निर्दयी है, उसे उस भेड़ की चौगुनी भरपाई करनी होगी। नाथान ने दाविद को उत्तर दिया, आप है वह व्यक्ति, यहावे इज़राइल के परमेश्वर का वचन यह है, इज़राइल पर मैंने तुम्हें राजा बनाया, शाऊल के वारों से मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे स्वामी का घर मैंने ही तुम्हें दे दिया है, मैंने ही तुम्हारे स्वामी की पत्नियां तुम्हारे अधिकार में कर दी है और तुम्हें इज़राइल और यहूदिया के वंश का अधिकारी बना दिया है। यदि यह सब तुम्हारे विचार से बहुत कम था, मैं तुम्हें इतना ही और दे देता। तुमने यहावे के वचन को क्यों तुच्छ समझा कि तुमने वही किया जो उनकी दृष्टि में गलत है? तुमने हित्ती उरिया पर तलवार चलाई और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। तुमने उरिया को अमोनियों की तलवार से घात किया है। अब तलवार तुम्हारे परिवार का पीछा कभी ना छोड़ेगी। तुमने मुझसे घृणा की है और हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। यहावे का यह कथन है, यह देखना कि मैं तुम्हारे ही परिवार में से तुम्हारे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को लेकर तुम्हारे साथी को दे दूंगा कि वह तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों से दिन के प्रकाश में कुकर्म करें। तुमने तो यह गुप्त में किया, मगर मैं यह पूरे इज़राइल के सामने करूंगा, और वह भी सूर्य प्रकाश में। दाविद ने नाथान से कहा, मैंने यहावे के विरुद्ध पाप किया है। नाथान ने दाविद से कहा, तुम्हारा पाप यहावे ने दूर कर दिया है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। फिर भी इस काम के द्वारा तुमने यहावे का तिरस्कार किया है। उस पुत्र की जिसका जन्म होने पर है मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद नाथान अपने घर चले गए। उरिया की पत्नी से दाविद का जो शिशु पैदा हुआ, यहावे ने उस पर वार किया और शिशु गंभीर रूप से रोगी हो गया। दाविद ने अपने शिशु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। इस समय दाविद ने ना कुछ खाया ना पिया, और वह जाकर सारी रात भूमि पर ही पड़े रहे। घर के सारे पुरनिये उनके निकट इस प्रतीक्षा में ठहरे रहे कि कब उन्हें भूमि पर से उठाए, मगर दाविद ने उठना अस्वीकार किया। उन्होंने उनके साथ भोजन भी ना किया। सातवें दिन शिशु की मृत्यु हो गई। दाविद को इसकी सूचना देने में सेवक झिझक रहे थे कि शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। उनका कहना था, देखो जब शिशु जीवित था और हम उन्हें मना रहे थे, उन्होंने हमारी ना सुनी, तब भला हम उन्हें कैसे बताए कि शिशु की मृत्यु हो गई है, कहीं वह अपनी ही कोई हानि ना कर ले। जब दाविद ने ध्यान दिया कि सेवक परस्पर दबे स्वर में बातचीत कर रहे थे, दाविद समझ गए कि शिशु की मृत्यु हो चुकी। दाविद ने सेवकों से प्रश्न किया, क्या शिशु की मृत्यु हो गई? जी हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। तब दाविद भूमि से उठे, स्नान कर तेल लगाया और अपने वस्त्र बदले। इसके बाद यहावे के भवन में जाकर उन्होंने उनकी वंदना की और अपने घर चले गए। उन्होंने भोजन मांगा, सेवकों ने उनके सामने भोजन परोस दिया और राजा ने वह खाया। इस पर सेवकों ने दाविद से पूछा, हमें समझ नहीं आया आपने यह क्या किया। जब शिशु जीवित था आप भूखे रहे और रोते रहे, मगर जब शिशु की मृत्यु हो गई आपने उठकर भोजन किया। दाविद ने उत्तर दिया, जब तक शिशु जीवित था मैं उपवास करते हुए रोता रहा क्योंकि मैं विचार कर रहा था किसे पता यहावे मुझ पर कृपा करे और शिशु जीवित रह जाए। मगर अब जब शिशु की मृत्यु हो चुकी है, क्या अर्थ है मेरे उपवास का? क्या इससे मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं उससे जा मिलूंगा, लौटकर वह मेरे पास ना आएगा। दाविद अपनी पत्नी बैतशेबा को सांत्वना देते रहे, वह उसके निकट रहे और उसमें संबंध बना। उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसे दाविद ने शलोमोन नाम दिया। वह यहावे का प्रिय हुआ। भविष्यद्वक्ता नाथान के द्वारा यहावे ने एक संदेश भेजा, तब यहावे की आज्ञा पर उन्होंने उसे येदीदिया नाम दिया। योआब ने अमोनियों के राबा नगर से युद्ध छेड़ दिया और इस राजधानी को अपने अधीन कर लिया। तब योआब ने दूतों द्वारा दाविद को यह संदेश भेजा, मैंने राबा नगर से युद्ध किया है और मैंने जल नगर पर अधिकार भी कर लिया है। अब आप बाकी सैनिकों को इकट्ठा कर नगर की घेराबंदी कर लीजिए और इसे अपने अधिकार में कर लीजिए। ऐसा ना हो कि मैं इस पर अधिकार कर लूं और यह मेरी संपत्ति के रूप में प्रख्यात हो जाए। तब दाविद ने सैनिक इकट्ठा किए और राबा नगर पर हमला किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उनके राजा के सिर से उसका मुकुट ले लिया। इस स्वर्ण मुकुट का वजन 1 तालांत था। एक अमूल्य रत्न भी इसमें जड़ित था। यह मुकुट दाविद के सिर पर रखा गया। दाविद इस नगर से अत्यंत भारी मात्रा में लूटी हुई सामग्री अपने साथ ले गए। इस नगर से दाविद नगर निवासी भी अपने साथ ले गए, जिन्हें उन्होंने श्रमिक बनाकर उन्हें आरी, कुदाली, कुल्हाड़ी से संबंधित कार्यों में लगा दिया और इन्हें ईंट निर्माण की भट्टियों में भी संलग्न कर दिया। यही उन्होंने अमोनियों के सारे नगरों के साथ किया। इसके बाद दाविद और सारे सैनिक यरूशलेम लौट गए। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 13। अम्मोन और तामार। दाविद के अबशालोम नामक पुत्र की अत्यंत रूपवती बहन थी, जिसका नाम तामार था। अम्मोन नामक दाविद के अन्य पुत्र को तामार से प्रेम हो गया। अम्मोन अपनी बहन के कारण इतना अधिक निराश हो गया कि वह रोगी रहने लगा। उसके साथ कुछ करना अम्मोन को कठिन जान पड़ता था। तामार अब तक कुंवारी थी। दाविद के भाई सिम्हा का योनादाब नामक पुत्र था, जो अम्मोन का मित्र था। वह एक चतुर व्यक्ति था। उसने अम्मोन से कहा, ओ राजा के सपूत, तुम दिन प्रतिदिन ऐसे मुरझाए हुए मुंह के क्यों हुए जा रहे हो? मुझे बताओ हुआ क्या है? अम्मोन ने उसे उत्तर दिया, मुझे मेरे भाई अबशालोम की बहन तामार से प्रेम हो गया है। योनादाब ने उससे कहा, ऐसा करो, जाकर अपनी बिछौने पर सो जाओ, मानो तुम रोगी हो। जब तुम्हारे पिता तुम्हें देखने आए तो उनसे कहना, मेरी बहन तामार को भेज दीजिए कि वह यहीं आकर मेरे देखते हुए भोजन तैयार करें, कि मैं उसकी के हाथ से भोजन करूं। तब अम्मोन ऐसे सो गया मानो वह रोगी था। जब राजा उसे देखने आए, अम्मोन ने राजा से कहा, कृपया मेरी बहन तामार को भेज दीजिए कि वह यहाँ आकर मेरे सामने मेरे लिए भोजन बनाए, कि मैं उसी के हाथ से भोजन कर सकूं। तब दाविद ने तामार के घर पर यह संदेश भेजा, अपने भाई अम्मोन के घर पर चली जाओ और उसके लिए भोजन तैयार कर दो। तब तामार अपने भाई अम्मोन के घर पर चली गई, जहां वह लेटा हुआ था। उसने वहां आटा गूंधा और उसके देखते हुए रोटियां बनाई। इसके बाद उसने बर्तन में से भोजन निकालकर अम्मोन को परोस दिया, मगर अम्मोन ने खाना ना चाहा। उसने आदेश दिया, अन्य सभी व्यक्ति उस कमरे से बाहर भेज दिए जाएं। तब सभी वहां से बाहर चले गए। तब अम्मोन ने तामार से कहा, भोजन यहाँ इस कमरे में लाया जाए कि मैं तुम्हारे हाथ से भोजन कर सकूं। तब तामार अपने द्वारा तैयार किया हुआ भोजन अपने भाई अम्मोन के निकट ले गई। जैसे ही वह उसके भोजन उसके निकट लेकर गई, अम्मोन ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, मेरी बहन आओ मेरे साथ सोओ। उसने उत्तर दिया, नहीं मेरे भाई, मुझे विवश ना करो। इसराइल राष्ट्र में ऐसा नहीं किया जाता, मत करो यह अनाचार। और फिर मेरे विषय में विचार करो, मैं इस लज्जा को कैसे धोती फिरूंगी? और अपने विषय में भी विचार करो, तुम तो इसराइल में दुष्ट मूर्ख के रूप में कुख्यात हो जाओगे। सही होगा कि तुम इस विषय में राजा से आग्रह करो, वह मेरे विषय में तुम्हारा आग्रह अस्वीकार ना करेंगे। मगर अम्मोन ने उसकी एक ना सुनी। तामार की अपेक्षा बलवान होने के कारण वह उस पर प्रबल हो गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। इसके होते ही अम्मोन तामार के प्रति ऐसी घृणा से भर गया जो बहुत बड़ी घृणा थी। उसकी यह घृणा उसके प्रति उसके प्रेम से कहीं अधिक भयंकर थी। तब अम्मोन ने तामार से कहा, चलो उठो और निकल जाओ यहां से। मगर तामार ने उससे कहा, नहीं मेरे भाई, तुम्हारा मुझे इस प्रकार भेजना मेरे साथ किए गए इस कुकर्म से भी ज्यादा गलत बात होगी। मगर अम्मोन ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने युवा सेवक को बुलाकर उसे आदेश दिया, इसी समय इस स्त्री को मेरी उपस्थिति से दूर ले जाओ और फिर यह द्वार बंद कर दो। तामार एक लंबा वस्त्र धारण किए हुए थी। इस वस्त्र में लंबी बाहें थी। राजा की कुंवारी कन्याएं इसी प्रकार का वस्त्र पहना करती थी। उस सेवक ने उसे कमरे से बाहर निकालकर द्वार बंद कर दिया। तामार ने अपने सिर पर भस्म डाल अपने लंबी बाहा युक्त वस्त्र को फाड़ दिया जिसे उसने इस समय पहना था। वह इस स्थिति में अपने मस्तक पर हाथ रखे हुए उच्च स्वर में रोती हुई लौट गई। तामार के भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तुम अपने भाई अम्मोन के यहाँ से आ रही हो? मेरी बहन, अब शांत हो जाओ, वह भाई है तुम्हारा, इसे अपने हृदय से निकाल दो। तब तामार अपने भाई अबशालोम के आवास में असहाय स्त्री होकर रहने लगी। इस घटना का समाचार सुनकर राजा दाविद बहुत क्रुद्ध हो गए। अबशालोम ने अम्मोन से भला बुरा कुछ भी ना कहा। अम्मोन ने उसकी बहन को भ्रष्ट किया था, इसलिए अबशालोम अम्मोन से घृणा करने लगा। तामार के लिए अबशालोम का प्रतिशोध। इस घटना के बाद 2 वर्ष पूर्ण होने पर अबशालोम ने राजा के सारे पुत्रों को बाल हाजोर नामक स्थान पर आमंत्रित किया। यह स्थान एफ्राइम के निकट था। यहीं अबशालोम के भेड़ के ऊन कतरने वाले चुने गए थे। अबशालोम ने राजा के निकट जाकर उनसे विनती की, कृपा कर सुनिए, आपके सेवक ने भेड़ के ऊन कतरने वाले चुने हैं, कृपया महाराज और उनके सेवक मेरे साथ वहां पधारें। मगर राजा ने अबशालोम को उत्तर दिया, नहीं मेरे पुत्र, हम सबका वहां जाना सही ना होगा, हम सब तुम्हारे लिए बोझ बन जाएंगे। अबशालोम विनती करता रहा मगर राजा मना करते रहे। हाँ, राजा ने अबशालोम को आशीर्वाद अवश्य दिया। इस स्थिति में अबशालोम ने अपने पिता से कहा, अच्छा, यदि आप नहीं जा सकते तो हमारे साथ मेरे भाई अम्मोन को ही जाने दें। इस पर राजा ने प्रश्न किया, क्यों, वह क्यों जाएगा तुम्हारे साथ? मगर जब अबशालोम विनती करता ही रहा, दाविद ने अम्मोन और सारे राजपुत्रों को उसके साथ जाने की आज्ञा दे दी। अबशालोम ने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था, देखते रहना, जब अम्मोन दाख मधु से नशे में हो जाए और जब मैं तुम्हें आदेश दूं अम्मोन पर वार करो, तब तुम उसे घात कर देना, जरा भी ना झिझकना। स्वयं मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूं, साहस बनाए रखना और वीरता दिखाना। अबशालोम के सेवकों ने इस आदेश का पूरा पूरा पालन किया। वह होते ही सभी राजपुत्र अपने अपने घोड़ों पर सवार हो भाग गए। जब वे सब मार्ग में ही थे, दाविद को यह समाचार इस प्रकार भेजा गया, अबशालोम ने सभी राजपुत्रों का संहार कर दिया है, एक भी जीवित शेष ना रहा है। यह सुनकर राजा ने शोक में अपने वस्त्र फाड़ दिए और उठकर भूमि पर जा लेटे। उनके निकट सभी सेवकों ने भी अपने वस्त्र फाड़ दिए। मगर दाविद के भाई सीमा के पुत्र योनादाब ने आश्वासन दिया, मेरे प्रभु यह ना मान ले कि उन्होंने सारे युवा राजपुत्रों का संहार कर दिया है, वध मात्र अम्मोन का ही किया गया है। इसका निश्चय अबशालोम ने उसी दिन कर लिया था जिस दिन अम्मोन ने अपनी बहन तामार से बलात्कार किया था। मेरे स्वामी महाराज, इस विचार से उदास ना हो कि सारे राजपुत्रों का संहार किया जा चुका है, क्योंकि सिर्फ अम्मोन का ही संहार किया गया है। इसी बीच अबशालोम वहां से भाग निकला। वहां नियुक्त युवा पहरेदार ने दृष्टि की, तो देखा कि उसके पीछे के मार्ग से पर्वत की एक ओर से अनेक लोग चले आ रहे थे। योनादाब ने राजा से कहा, देखिए राजपुत्र लौट आए हैं। ठीक वैसा ही हुआ है जैसे आपके सेवकों ने आपको कहा था। वह यह कह ही रहा था कि राजपुत्र आ पहुंचे और ऊंची आवाज में रोने लगे। उनके साथ राजा और सारे सेवक भी ऊट फूट कर रोने लगे। इस समय अबशालोम कूच करके गेशूर के राजा अमीहूद के पुत्र तालमाई की शरण में जा पहुंचा। राजा दाविद अपने पुत्र के लिए हर रोज रोते रहे। अबशालोम भागकर गेशूर नामक स्थान पर गया और वहां 3 साल तक रहता रहा। राजा दाविद का हृदय अबशालोम से मिलने के लिए व्याकुल रहता था। अब उन्हें अम्मोन मृत्यु के विषय में शांति प्राप्त हो चुकी थी। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 14। तेकोवा की स्त्री। जेरुया के पुत्र योआब ने यह भांप लिया कि राजा का हृदय अबशालोम के लिए लालायित है। योआब ने तकोवा नगर से एक विदुषी को बुलवाकर उसे ये निर्देश दिए, विलाप वस्त्र धारण कर कृपया आप एक विलाप करने वाली का अभिनय कीजिए। आप किसी भी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन ना कीजिए। आपके रोने का ढंग ऐसा हो मानो आप लंबे समय से किसी मृतक के लिए विलाप कर रही हो। तब आप राजा की उपस्थिति में जाकर इस प्रकार कहिए। और योआब ने उस स्त्री को समझा दिया कि उसे वहां क्या क्या कहना होगा। जब तकोवा निवासी वह स्त्री राजा की उपस्थिति में आई, उसने भूमि पर मुख के बल गिरकर सम्मानपूर्वक राजा का अभिवादन किया और राजा के सामने अपनी यह विनती की, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उससे प्रश्न किया, क्या है तुम्हारी व्यथा? उसने उत्तर दिया, मैं एक अभागी विधवा हूँ, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। आपकी सेविका के 2 पुत्र थे, जब वे खेत में थे उनमें विवाद फूट पड़ा। वहां कोई भी ना था जो उनके बीच हस्तक्षेप करे। एक ने ऐसा वार किया कि दूसरे की मृत्यु हो गई। अब सारे परिवार आपकी सेविका के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। उनकी मांग है, अपना वह पुत्र हमें सौंप दो जिसने भाई की हत्या की है, कि हम उसके भाई की हत्या के लिए उसकी भी हत्या करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो उत्तराधिकारी की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। इससे तो वे उत्तराधिकारी ही समाप्त कर देंगे। इसमें तो वे मेरे शेष रह गए अंगार का ही शमन कर देंगे, और तब पृथ्वी पर मेरे पति का ना तो नाम रह जाएगा और ना कोई उत्तराधिकारी। यह सुन राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम अपने घर जाओ, इस विषय में मैं आदेश प्रसारित करूंगा। तकोवा निवासी उस स्त्री ने राजा से कहा, महाराज मेरे स्वामी, इसका दोष मुझ पर और मेरे पिता के वंश पर हो। महाराज और महाराज का सिंहासन इस विषय में निर्दोष रहेंगे। राजा ने आगे यह भी कहा, यदि कोई भी इस विषय में आपत्ति उठाए तो उसे मेरे यहाँ भेज देना, वह फिर कभी तुम्हें सताएगा नहीं। स्त्री ने तब यह भी कहा, कृपया महाराज यहावे अपने परमेश्वर से यह विनती करें कि अब बदला लेने वाला किसी की हत्या ना करें और मेरा पुत्र जीवित रहे। राजा ने आश्वासन दिया, जीवंत यहावे की शपथ, तुम्हारे पुत्र का एक बाल भी भूमि पर ना गिरेगा। इसके बाद उस स्त्री ने दाविद से यह कहा, कृपया अपनी दासी को महाराज एक और विनती प्रस्तुत करने की आज्ञा दे, कहो। राजा ने कहा, उसे स्त्री ने कहा, क्या कारण है आपने परमेश्वर की प्रजा के लिए ऐसी युक्ति की है? आपने इस समय जो निर्णय दिया है उसके द्वारा महाराज ने स्वयं अपने को ही दोषी घोषित कर दिया है, क्योंकि आपने अपने निकाले हुए को यहाँ नहीं लौटाया है। हम सभी की मृत्यु निश्चित है। हम सभी भूमि पर छलक चुके उस जल के समान है जिसे दोबारा इकट्ठा करना संभव नहीं होता। मगर परमेश्वर जीवन नष्ट नहीं करते। वह ऐसी युक्ति करते हैं कि कोई भी निकाले हुए हमेशा उनकी उपस्थिति से दूर ना रहे। यह कहने के लिए मैं महाराज के सम्मुख इसलिए आई हूँ कि लोगों की सुनकर मुझे भय लग रहा है। आपकी सेविका ने विचार किया, अब मुझे महाराज से यह कहना ही होगा। संभव है महाराज अपनी सेविका की विनती पूरी करें, क्योंकि जब महाराज यह सुनेंगे वही अपनी सेविका को उस व्यक्ति से सुरक्षा प्रदान करेंगे जो मुझे और मेरे पुत्र को परमेश्वर के उत्तराधिकारी से वंचित करने पर है। आपकी सेविका ने यह भी विचार किया, महाराज मेरे स्वामी का आदेश ही मेरे मन को शांति दे सकता है, क्योंकि महाराज मेरे स्वामी परमेश्वर के सदृश ही उचित अनुचित भांप लेते हैं। यहावे आपके परमेश्वर आपके साथ रहे। यह सुन राजा ने उस स्त्री से कहा, मुझसे कुछ न छिपाना, मैं तुमसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। उस स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज मेरे स्वामी मुझसे प्रश्न करें। राजा ने पूछा, इन सारी बातों में क्या तुम्हारे साथ योआब शामिल है? आपके जीवन की शपथ, महाराज मेरे स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर निरे सत्य के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। वह योआब ही थे जिन्होंने मुझे यह सब करने का आदेश दिया था। यह सारे वक्तव्य आपकी सेविका को उन्हीं ने सुझाया था। आपके सेवक योआब ने यह सब इसलिए किया है कि इस समय घटित हो रही घटनाओं की दिशा परिवर्तित की जा सके। मगर मेरे स्वामी में परमेश्वर के स्वर्गदूत के समान ऐसी बुद्धि है कि पृथ्वी के सारे विषयों को समझा जा सके। तब राजा ने योआब को आदेश दिया, सुनो, मैंने तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया, जाओ उस युवा अबशालोम को यहाँ ले आओ। योआब ने भूमि पर दंडवत होकर राजा का अभिवादन किया और उनसे यह प्रतिवेदन किया, आज आपके सेवक को यह मालूम हो गया है कि मुझ पर आपकी दया बनी है, क्योंकि महाराज मेरे स्वामी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तब योआब गेशूर के लिए चले गए और अबशालोम को यरूशलेम ले आए। राजा ने आदेश दिया, सही होगा कि उसे उसी के घर में रहने दिया जाए, वह मेरी उपस्थिति में ना आए। इसलिए अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का चेहरा ना देखा। सारे इसराइल में सुंदरता में ऐसा कोई भी ना था जो अबशालोम के समान प्रशंसनीय हो। सिर से लेके पैरों तक उसमें कहीं भी कोई दोष ना था। प्रतिवर्ष जब उसके केश काटे जाते थे, क्योंकि उसके सिर के लिए वे बहुत भारी सिद्ध होते थे, तब राजा के तुलामान के अनुसार इन केशों का भार 200 शेकेल होता था। अबशालोम के 3 पुत्र पैदा हुए और एक पुत्री जिसका नाम था तामार, वह रूपवती स्त्री थी। अबशालोम को यरूशलेम में रहते हुए राजा की उपस्थिति में गए बिना 2 साल बीत गए। तब अबशालोम ने योआब से विनती की कि उसे राजा की उपस्थिति में जाने दिया जाए, मगर योआब उससे भेंट करने नहीं आए। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ योआब के खेत में आग लगा दो, यह देख लेना कि योआब का खेत मेरे खेत से लगा हुआ है और इसमें जौ की उपज खड़ी हुई है। अबशालोम के सेवकों ने जाकर उस खेत में आग लगा दी। इस पर योआब ने अबशालोम के घर पर जाकर उससे पूछा, तुम्हारे सेवकों ने मेरे खेत में आग क्यों लगाई? अबशालोम ने योआब को उत्तर दिया, याद है मैंने आपसे विनती की थी, आप यहाँ आए कि मैं आपको राजा की उपस्थिति में इस विनती के साथ भेजूं, क्या लाभ हुआ मेरे गेशूर से यहाँ आने का? मेरे लिए अच्छा यही होता कि मैं वहीं ठहरा रहता। अब तो मुझे राजा के दर्शन करने दीजिए, यदि मैं उनकी दृष्टि में अपराधी हूँ तो वही मुझे मृत्यु दंड दे दे। तब योआब ने जाकर राजा को यह सब बताया। राजा ने अबशालोम को बुलवाया। अबशालोम ने राजा की उपस्थिति में जाकर भूमि पर गिरकर उनको नमस्कार किया और राजा ने अबशालोम का चुंबन लिया। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। अबशालोम का विद्रोह। कुछ समय बाद अबशालोम ने अपने लिए एक रथ, कुछ घोड़े और इनके आगे आगे दौड़ने के लिए 50 दौड़ने वाले जुटा लिए। अबशालोम सुबह जल्दी उठकर नगर फाटक के मार्ग पर खड़ा हो जाता था, जब कभी कोई व्यक्ति अपना विवाद लेकर राजा के सामने न्याय के उद्देश्य से आता था। अबशालोम उसे बुलाकर उससे पूछता था, कहाँ से आ रहे हो? उसे उत्तर प्राप्त होता था, इसराइल के एक वंश से। तब अबशालोम उसे सलाह देता था, देखो तुम्हारी विनती पूरी तरह सटीक और सही है, मगर राजा द्वारा ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया है कि तुम्हारी विनती पर विचार किया जा सके। अबशालोम आगे कहता था, कितना अच्छा होता यदि मैं उस देश के लिए न्याय अध्यक्ष बना दिया जाता, तब हर एक व्यक्ति आकर मुझसे उचित न्याय प्राप्त कर सकता। यदि कोई व्यक्ति आकर उसे नमस्कार करने आता था, वह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़कर उसका चुंबन ले लिया करता था। अबशालोम की अब यही रीति हो गई थी कि जो कोई न्याय के उद्देश्य से राजा के सामने जाने के लिए आता था, अबशालोम उसके साथ यही व्यवहार करता था। यह करके अबशालोम ने इज़राइल की जनता के हृदय जीत लिया। 4 वर्ष पूरे होते होते अबशालोम ने राजा से कहा, कृपया मुझे हेब्रोन जाने की अनुमति दीजिए, मुझे वहां यहावे से किए गए अपने संकल्प को पूरा करना है। अराम राष्ट्र के गेशूर में रहते हुए आपके सेवक ने यह संकल्प लिया था, यदि यहावे मुझे वास्तव में यरूशलेम लौटा ले आएंगे, मैं हेब्रोन में आकर यहावे की वंदना करूंगा। राजा ने उसे उत्तर दिया, शांतिपूर्वक जाओ। तब अबशालोम तैयार होकर हेब्रोन के लिए चला गया। अबशालोम सारे इज़राइल में गुप्त रूप से इस संदेश के साथ दूत भेज चुका था, जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, यह घोषणा करना, हेब्रोन में अबशालोम राजा है। यरूशलेम से अबशालोम के साथ 200 व्यक्ति भी हेब्रोन गए थे, आमंत्रित अतिथि थे। वे काफी मासूमियत से गए थे, उन्हें कुछ भी मालूम ना था कि क्या क्या हो रहा था। अबशालोम ने बलि चढ़ाने के अवसर पर गिलोवासी अहितोफेल को गिलो नगर, जो उनका अपना नगर था, आने का न्योता दिया। अहितोफेल दाविद का मंत्री था। यहां अबशालोम के समर्थक की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र मजबूत होता चला गया। यरूशलेम से दाविद का पलायन। एक दूत ने आकर दाविद को यह सूचना दी, इज़राइल के लोगों के दिल अबशालोम के साथ हो गया है। यह मालूम होते ही दाविद ने यरूशलेम में अपने साथ के सभी सेवकों को आदेश दिया, उठो, हमें यहां से भागना होगा, नहीं तो हम अबशालोम से बच ना सकेंगे। हमें इसी क्षण निकलना होगा कि हम घिर ना जाए और हम पर विनाश ना आ पड़े और सारा नगर तलवार का आहार ना हो जाए। राजा के सेवकों ने उन्हें उत्तर दिया, सच मानिए महाराज, हमारे स्वामी जो कुछ कहे वह करने के लिए आपके सेवक तैयार हैं। तब राजा निकल पड़े और उनके साथ उनका सारा घर परिवार भी। मगर दाविद ने अपनी 10 उपपत्नियों को घर की देखभाल के उद्देश्य से वहीं छोड़ दी। राजा अपने घर से निकल पड़े और उनके पीछे पीछे सारे लोग भी। चलते हुए वे आखिरी घर तक पहुंचकर ठहर गए। उनके सारे अधिकारी उनके पास से निकलकर आगे बढ़ गए। ये सभी थे, केरेथी, पेलेथी और 600 गाथवासी जो उनके साथ गाथ नगर से आए हुए थे। ये सभी उनके सामने से होकर निकले। राजा ने गाथ नगर वासी इत्तई से कहा, आप क्यों हमारे साथ हो लिए हैं? आप लौट जाइए और अपने राजा का साथ दीजिए। वैसे भी आप विदेशी हैं, अपने स्वदेश से निकाले हुए। आप कल ही तो हमारे पास आए हैं, क्या मैं आपको अपने साथ भटकने के लिए विवश करूं? मुझे तो यही मालूम नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। आप लौट जाइए, ले जाइए अपने भाइयों को अपने साथ। यहावे तुम पर अपना अपार प्रेम और विश्वास योग्यता बनाए रखें। मगर इत्तई ने राजा को उत्तर दिया, जीवित यहावे की शपथ, जहां कहीं महाराज मेरे स्वामी होंगे, चाहे जीवन में अथवा मृत्यु में, आपका सेवक भी वहीं होगा। तब दाविद ने इत्तई से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब गाथवासी इत्तई इन सभी व्यक्तियों के साथ शामिल हो गए, इनमें बालक भी शामिल थे। जब यह समूह आगे बढ़ रहा था, सारा देश ऊंची आवाज में रो रहा था। राजा ने किद्रोन नदी पार की और वे सब बंजर भूमि की ओर बढ़ गए। अबियाथर भी वहां आए और सादोक के साथ सारे लेवी लोग भी। ये अपने साथ परमेश्वर की वाचा का संदूक भी ले आए थे। उन्होंने वाचा के संदूक को उस समय तक भूमि पर रखे रहने दिया जब तक सभी लोग नगर से बाहर ना निकल गए। इसके बाद राजा ने सादोक को आदेश दिया, परमेश्वर की वाचा के संदूक को अब नगर लौटा ले जाओ यदि यहावे की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रही तो वह मुझे लौटा लाएंगे, तब मैं इस संदूक और उनके निवास का दर्शन कर सकूंगा। मगर यदि यहावे यह कहे, तुम में मेरी कोई भी खुशी नहीं, तो मैं यही हूं कि वह मेरे साथ वही करे जो उन्हें उचित जान पड़े। तब राजा ने पुरोहित सादोक से कहा, सुनिए, आप शांतिपूर्वक नगर लौट जाइए, अपने साथ अपने पुत्र अहिमाज को और अबियाथर के पुत्र योनातन को ले जाइए। यह ध्यान में रहे, तुमसे सूचना प्राप्त होने तक मैं वन में ठहरूंगा। अबियाथर परमेश्वर का संदूक लेकर यरूशलेम लौट गए और वे वहीं ठहरे रहे। दाविद जैतून पर्वत की चढ़ाई चढ़ते चले गए। वह चलते हुए रोते जा रहे थे। उनका सिर तो ढका हुआ था, मगर पांव नंगे। उनके साथ चल रहे हर एक व्यक्ति ने भी अपना अपना सिर ढक लिया था और वे भी रोते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर किसी ने दाविद को यह सूचना दी, अहीतोफेल भी अब शालोम के षड्यंत्रकारियों में शामिल है। यह सुन दाविद ने प्रार्थना की, यहावे आपसे मेरी प्रार्थना है, अहीतोफेल की सलाह को मूर्खता में बदल दीजिए। जब दाविद पर्वत की चोटी पर पहुंच रहे थे, जिस स्थान पर परमेश्वर की आराधना की जाती है, अर्की हुशाई उनसे भेंट करने आ गया। उसका बाहरी वस्त्र फटे हुए था और सिर पर धूल पड़ी हुई थी। दाविद ने उससे कहा, सुनो, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरे लिए बोझ बन जाओगे, मगर यदि तुम लौटकर नगर चले जाओ और अब शालोम से कहो, महाराज, मैं अब आपका सेवक हूँ, ठीक जिस प्रकार पहले आपके पिता का सेवक था, अब आपका सेवक रहूं, तब तुम वहां मेरे पक्ष में अहीतोफेल की युक्ति को विफल कर सकोगे। तुम्हारे साथ के पुरोहित सादोक और अबियाथर भी तो वही हैं। राजमहल से तुम्हें जो कुछ मालूम होता है, तुम वह पुरोहित सादोक और अबियाथर को सूचित कर सकते हो। याद है ना, उनके दो पुत्र वहां उनके साथ हैं, अहिमाज सादोक का पुत्र और योनातन अबियाथर का पुत्र। तुम्हें वहां जो कुछ मालूम होता है, तुम इनके द्वारा भेज सकते हो। तब दाविद के मित्र हूशाई नगर में आ गए। अबशालोम भी इस समय यरूशलेम आ चुका था। शमूएल की दूसरी पुस्तक, अध्याय 16। दाविद और ज़ीबा। जब दाविद पर्वत की चोटी से कुछ आगे निकल गए, मेफीबोशेत का सेवक ज़ीबा उनसे भेंट करने आया। वह अपने साथ दो गधों पर, 200 रोटियां, किशमिश के 100 गुच्छे, 100 गर्मियों के फल और अंगूर के रस का एक बर्तन लादकर लाया था। राजा ने ज़ीबा से पूछा, यह सब क्या ले आए हो तुम? ज़ीबा ने उन्हें उत्तर दिया, ये गधे तो आपके परिवार को उठाने के लिए हैं, और रोटियां और गर्मियों के फल युवाओं के आहार के लिए, और अंगूरों का रस उनके पेय के लिए जो इस वन में थक जाए। दाविद ने ज़ीबा से आगे पूछा, तुम्हारे स्वामी का पुत्र कहाँ है? ज़ीबा ने राजा को उत्तर दिया, वह यरूशलेम में ही है, क्योंकि वह कहते हैं, आज इज़राइल मुझे मेरे पिता का साम्राज्य वापस कर देगा। यह सुन दाविद ने ज़ीबा से कहा, सुनो, जो कुछ मेफीबोशेत का है वह अब तुम्हारा है। मेरे स्वामी महाराज, ज़ीबा ने कहा, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शीमेई दाविद को शाप देता है। जब राजा दाविद बहुरीम पहुंचे, वहां शाऊल का एक संबंधी उनके सामने आ गया, जिसका नाम था शीमेई, जो गेरा का पुत्र था। वह दाविद की ओर बढ़ता चला आ रहा था और लगातार उन्हें शाप देता जा रहा था। वह दाविद पर और राजा दाविद के सारे साथियों पर पत्थर भी फेंकता जा रहा था, जबकि दाविद के सैन्य अधिकारी उनके दाएं और बाएं उन्हें घेरे हुए चल रहे थे। शीमेई इन शब्दों में उन्हें शाप दे रहा था, निकल जा यहां से, लहू के प्यासे व्यक्ति, निकम्मे पुरुष। यहावे ने शाऊल के परिवार में की गई सारी हत्याओं का बदला ले लिया है, जिनके स्थान पर तू सिंहासन पर जा बैठा था। देख ले, अब यहावे ने यह राज्य तुझसे छीनकर तेरे पुत्र अबशालोम को दे दिया है। देख ले, तेरी बुराई तुझ पर ही आ पड़ी है, क्योंकि तू लहू का प्यासा व्यक्ति ही है। जेरुया के पुत्र अबिशाय ने यह देख राजा से कहा, मेरे स्वामी, महाराज को भला यह मरा हुआ कुत्ता शाप क्यों दे? मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर इसका सिर धड़ से अलग कर दूं। मगर राजा ने उसे उत्तर दिया, जेरुया के पुत्रों, तुम में और मुझ में कहीं कोई समानता नहीं है। यदि वह मुझे इसलिए शाप दे रहा है कि उसे यहावे ही ने यह आदेश दिया है, शाप दो दाविद को, तब कौन है जो उससे यह पूछेगा, क्यों कर रहे हो ऐसा? तब दाविद ने अबिशाई और अपने सारे सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, देख रहे हो ना, मेरा अपना पुत्र ही आज मेरे प्राणों का प्यासा हो गया है, तो फिर बिन्यामीन का वंशज और कितना अधिक ना चाहेगा। मत रोको उसे, उसे शाप देने दो, क्योंकि उसे उसके लिए आदेश यहावे से प्राप्त हुआ है। संभव है यहावे मेरी पीड़ा पर दृष्टि करे और उसके द्वारा की जा रही शाप की बारिश का प्रतिफल मुझे मेरे कल्याण में दे। तब दाविद और उनके साथी मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए और शीमेई उनके सामांतर पहाड़ी के ढाल पर उनके साथ साथ चलता गया। चलते हुए वह शाप देता जा रहा था, उन पर पत्थर फेंकता जा रहा था और साथ ही धूल भी उछालता जाता था। राजा उनके सारे साथी यर्दन नदी पर थके हुए पहुंचे। वहां दाविद में नई ताजगी आ गई। अब शालोम का यरूशलेम प्रवेश और अहितोफेल का परामर्श। अब शालोम और इजरायली जनता यरूशलेम पहुंच गए। अहितोफेल उनके साथ ही थे। यह उस समय की घटना है जब दाविद के मित्र अर्की हुशाई ने अबशालोम की उपस्थिति में पहुंचकर उससे कहा, महाराज की लंबी आयु हो, महाराज की लंबी आयु हो। अबशालोम ने हुशाई से पूछा, क्या अपने मित्र के प्रति सच्चाई ऐसे ही दिखाई जाती है? क्यों नहीं गए आप अपने मित्र के साथ? हुशाई ने अबशालोम को उत्तर दिया, नहीं, मगर मैं तो उसी का होकर रहूंगा जिसे यहावे जनसाधारण और सारे इसराइल ने चुना है। मैं भी उसी का साथ दूंगा। यह भी समझ लीजिए, किसकी सेवा करना मेरे लिए सही है, क्या उनके ही पुत्र की नहीं? जिस प्रकार मैंने आपके पिता की सेवा की है, आपकी भी करूंगा। इस पर अबशालोम ने अहितोफेल से कहा, अब आप मुझे सलाह दीजिए, क्या होगा मेरा अगला कदम? अहितोफेल ने अबशालोम को आदेश दिया, जिन उपपत्नियों को तुम्हारे पिता गृह प्रबंधन के उद्देश्य से यहाँ छोड़ गए हैं, जाकर उनसे संबंध बनाओ। जब सारा इसराइल इसके विषय में सुनेगा कि तुमने स्वयं को अपने पिता के लिए घृणित बना लिया है, इससे उन सभी को जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे समर्थक है, बल मिलेगा। तब इसके लिए राजमहल की छत पर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशालोम ने सारे इसराइल के देखते देखते अपने पिता की उपपत्नी से संबंध बनाया। उन दिनों में अहितोफेल द्वारा दी गई सलाह वैसी ही मानी जाती थी जैसा किसी ने परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त कर लिया है। दाविद और अबशालोम दोनों ही के लिए अहितोफेल की सलाह बहुत ही सम्माननीय होती थी। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। इसके अलावा अहितोफेल ने अबशालोम से यह भी कहा, मुझे आज्ञा हो कि मैं सर्वोत्तम 12,000 सैनिक लेकर आज ही रात में दाविद का पीछा करूं। मैं उस पर ऐसी स्थिति में हमला करूंगा जब वह थका हुआ और निर्बल होगा, तब मैं उसे आतंकित कर दूंगा, जिससे उसके सारे साथी उसे छोड़कर भाग जाएंगे। मैं सिर्फ राजा पर वार करूंगा और मैं बाकी सभी को उस रीति से लौटा लाऊंगा जैसे वधु अपने पति के लिए लौट आती है। सभी का लौटकर यहाँ आ जाना सिर्फ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे आप खोज रहे हैं, तभी जन साधारण में शांति हो सकेगी। अबशालोम और सारे इसराइली पुरनियों को यह युक्ति सही लगी। तब अबशालोम ने आदेश दिया, अर्की हुशाई को भी यहाँ बुलवाया जाए कि हम इस विषय में उसका मत भी सुन लें। जब हुशाई अबशालोम की उपस्थिति में आए, अबशालोम ने उन्हें अहितोफेल की योजना की जानकारी देते हुए उनसे पूछा, अहितोफेल ने यह युक्ति सुझाई है, क्या इसके अनुसार करना सही होगा? यदि नहीं तो आप अपनी योजना हमें बताएं। यह सुन हुशाई ने अबशालोम से कहा, इस स्थिति में अहितोफेल सही सलाह देने में चूक गए हैं। आगे हुशाई ने कहा, यह तो आपको मालूम ही है कि आपके पिता और उनके साथी वीर योद्धा हैं। इस समय उनकी मन स्थिति ठीक वैसी है जैसे मैदान में नन्हे शावकों के छीन जाने पर गुस्सैल रीछनी की होती है। वे अभी बहुत गुस्से में है। इसके अलावा आपके पिता युद्ध कौशल में बहुत निपुण हैं। यह हो ही नहीं सकता कि वह सेना के साथ रात बिताए। यह देख लेना कि इस समय वह किसी गुफा या किसी दूसरे ऐसे स्थान में जा छिपे हैं। जब प्रथम आक्रमण किया जाएगा और हमारे सैनिक मारे जाएंगे, तब जो कोई इसके विषय में सुनेगा यही कहेगा, अबशालोम के सैनिक इस आक्रमण में परास्त किए गए हैं। तब वह अबशालोम के सैनिकों में जो वीर है, जो साहस में सिंह सदृश हृदय का है, पूरी तरह हतोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि सारे इसराइल में यह सबको मालूम है कि आपके पिता शूर योद्धा हैं और उनके साथ की सैनिक कुशल योद्धा हैं। इस समय आपके लिए मेरा परामर्श यह है कि आपके सामने दान से लेकर बेशरबा से सारे इसराइल इकट्ठा किया जाए, ऐसे जनसमूह के रूप में जैसे सागर तट के धूल के कण, और आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से युद्ध संचालन करें। तब हम उन्हें उस स्थान से खोज निकालेंगे जहां वह छिपे हुए हैं। फिर हम उन पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे ओस भूमि पर जा पड़ती है, उन पर और उनके सारे सैनिकों पर। हम एक को भी ना छोड़ेंगे। यदि वह किसी नगर में जा छिपेगा, तब सारा इसराइल रस्सियां लेकर उस नगर में पहुंच जाएगा और हम उस नगर को घसीटकर घाटी में डाल देंगे, यहां तक कि वहां एक भी कंकड़ बाकी ना रह जाएगा। तब अबशालोम और इसराइल के सभी पुरनिये यह कह उठे, अर्की हुशाई का परामर्श अहितोफेल के परामर्श से श्रेष्ठतर है। यह इसलिए कि यहावे ने ही अहितोफेल के सुसंगत परामर्श को विफल कर देना निर्धारित कर रखा था कि यहावे अबशालोम पर विनाश वृष्टि कर दे। इसके बाद हुशाई ने पुरोहित सादोक और अबियाथर को यह संदेश भेजा। अहितोफेल ने अबशालोम और इसराइली वृद्धों को यह परामर्श दिया था और मैंने उन्हें यह परामर्श दे दिया है। अब शीघ्र अति शीघ्र दाविद को यह संदेश भेज दीजिए, रात बंजर भूमि के घाट पर ना बिताए, बल्कि पूरी शक्ति से प्रयास कर आप नदी के पार चले जाए, अन्यथा महाराज और उनके सारे साथियों का विनाश होना निश्चित है। योनातन और अहिमास एन रोगेल नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। एक दासी ठहराई गई थी कि वह जाकर उन्हें सूचित करे, और तब वे जाकर यह सूचना राजा दाविद को भेजे, क्योंकि यह जरूरी थी कि वे नगर में प्रवेश करते हुए देखे ना जाए। फिर भी एक युवक ने उन्हें देख ही लिया और इसकी सूचना अबशालोम को दे दी। तब वे दोनों बिना देर किए बहुरीम नामक स्थान पर एक व्यक्ति के घर पर जा पहुंचे, जिसके आंगन में एक कुआं था। वे दोनों इस कुएं में जा छिपे। एक स्त्री ने कुएं पर वस्त्र बिछाकर उस पर अन्न फैला दिया, जिससे इन दोनों के विषय में किसी को कुछ भी मालूम ना हो सका। तभी अबशालोम के सैनिक वहां आ पहुंचे और उस गृहिणी से पूछताछ करने लगे, कहाँ हैं अहिमाज और योनातन? स्त्री ने उन्हें उत्तर दिया, वे तो नदी के पार जा चुके हैं। सैनिक उन्हें खोजते रहे और जब उन्हें ना पा सके, वे यरूशलेम लौट गए। जब सैनिक वहां से चले गए, वे दोनों कुएं से बाहर आए और जाकर राजा दाविद को सारा हाल सुना दिया। उन्होंने दाविद से कहा, बिना देर किए उठिए और नदी के पार चले जाइए, क्योंकि अहितोफेल ने आपके विरुद्ध यह साजिश कर रखी है। तब दाविद और उनके सारे साथी उठे और यरदन नदी के पार चले गए। सुबह होते होते वहां ऐसा कोई भी ना था जो यरदन नदी के पार ना गया था। यहां जब अहितोफेल ने यह देखा कि उसकी सलाह को ठुकरा दिया गया है, उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने गृह नगर में अपने घर को निकल पड़ा। उसने अपने परिवार को सुव्यवस्थित किया, उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को उसके पिता की कब्र में गाड़ दिया गया। अबशालोम की मृत्यु। फिर दाविद महानाइम पहुंचे। अबशालोम ने यरदन नदी पार की, उसके साथ सारे इसराइली सैनिक थे। अबशालोम ने योआब के स्थान पर अमासा को सेना का अधिकारी बनाया था। अमासा जेथर नामक इश्माइली व्यक्ति के पुत्र थे। जेथर ने नाहाश की पुत्री अबीगैल जो योआब की माता जेरूया की बहन थी, से विवाह किया था। इजरायली सेना अबशालोम के साथ गिलाद क्षेत्र में छावनी डाली हुई थी। जब दाविद महानाइम पहुंचे, अम्मोन वंशज रभावासी नाहाश के पुत्र शोबी, लो देबारवासी अमियेल के पुत्र माखीर और रेगेलीम क्षेत्र से गिलादवासी बार जिल्लई दाविद और उनके साथी के उपयोग के लिए अपने साथ बिछोने, चिलमचियां, मिट्टी के पात्र, गेहूं, जौ, मैदा, भुना गया अन्न, फलियां, दालें, मधु, दही, भेड़े और भेड़ों के दूध से बनाया पनीर आदि ले आए, क्योंकि उन्होंने कहा, बंजर भूमि में यात्रा कर रहे थे लोग अवश्य ही भूखे और प्यासे थके होंगे। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। दाविद ने अपने साथियों की गिनती की और इसमें उन्होंने हजारों और सैकड़ों के ऊपर प्रधान बना दिए। तब उन्होंने सेना को तीन भागों में बांटकर एक तिहाई भाग योआब के नेतृत्व में, दूसरी तिहाई भाग जेरूया के पुत्र और योआब के भाई अभिशाई के नेतृत्व में और तीसरी तिहाई भाग गाथी इत्तई के नेतृत्व में भेज दिया। राजा ने सेना के सामने यह घोषित किया, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर सैनिकों ने विरोध किया, नहीं, आपका हमारे साथ जाना सही नहीं है। यदि हमें भागना ही पड़ जाए तो उन्हें तो हमारी कोई परवाह नहीं है। यदि हम आधे मार दिए जाए तो भी अब शालोम के सैनिक परवाह नहीं करेंगे, मगर आपका महत्व हम जैसे 10,000 के बराबर है। तब इस स्थिति में ठीक यही है कि आप नगर में रहते हुए ही हमारा समर्थन करें। यह सुन राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं वही करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में सही है। तब राजा नगर फाटक के पास खड़े हो गए और सारी सेना 100-100 और 1,000 के समान समूहों में उनके पास से निकलते चले गए। राजा ने योआब, अबिशाई और इत्तई को आदेश दिया, मेरे हित का ध्यान रखते हुए इस युवा अबशालोम के साथ दया दिखाना। राजा द्वारा अबशालोम के विषय में सारे प्रधानों को दिए गए इस आदेश को सारी सेना ने भी सुना। तब यह सेना इसराइल से युद्ध करने मैदान में जा पहुंची और यह युद्ध एफ्राइम के वन में छिड़ गया। दाविद के सैनिकों ने इसराइल की सेना को हरा दिया। उस दिन की मार बहुत ही भयानक थी, जिसमें 20,000 सैनिक मारे गए। यह युद्ध पूरे देश में फैल गया था। तलवार की अपेक्षा वन के घनत्व ने ही अधिकतर सैनिकों के प्राण ले लिए। संयोगवश अबशालोम की भेंट दाविद के सैनिकों से हो गई। उस समय अबशालोम अपने खच्चर पर चढ़ा हुआ था। खच्चर एक विशालकाय बांज वृक्ष के नीचे से भागने लगा। परिणाम स्वरूप अबशालोम का सिर बांज वृक्ष की डालियों में मजबूती से जा फंसा। उसका खच्चर तो आगे बढ़ गया, मगर वह स्वयं भूमि और आकाश के बीच लटका रह गया। किसी ने अबशालोम को इस स्थिति में देख लिया और जाकर योआब को इसकी सूचना दे दी, सुनिए, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष से लटके हुए देखा है। योआब ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुमने उसे सचमुच देखा है, तब तुमने उसे मारकर भूमि पर क्यों ना गिरा दिया? इसके लिए मैं तुम्हें खुशी से 10 चांदी के सिक्के और योद्धा का एक कमरबंद भी दे देता। मगर उस व्यक्ति ने योआब को उत्तर दिया, यदि मेरे हाथ पर 1,000 चांदी के सिक्के भी रख दिए जाते, मेरा हाथ राजकुमार पर नहीं उठ सकता था, क्योंकि स्वयं हमने राजा को, आपको, अभिशाई को और इत्तई को यह आदेश देते हुए सुन रखा है, मेरे हित का ध्यान रखते हुए उस युवा अबशालोम को सुरक्षित रखना। इसके अलावा यदि मैंने उसके प्राण लेकर राजा के प्रति विश्वासघात किया भी होता, तो आप तो मुझसे स्वयं को पूरी तरह अलग ही कर लेते, जबकि राजा से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इस पर योआब ने कहा, व्यर्थ है तुम्हारे साथ समय नष्ट करना। उन्होंने तीन भाले लिए और बांज वृक्ष में लटके हुए जीवित अबशालोम के हृदय में भोंक दिए। उसके बाद 10 सैनिकों ने, जो योआब के हथियार उठाने वाले थे, अबशालोम को घेरकर उस पर वार कर उसे घात कर दिया। यह होने के बाद योआब ने युद्ध समाप्ति की, तुरी फूंकी और सैनिक इसराइल का पीछा करना छोड़ लौट आए। युद्ध समापन योआब का आदेश था। उन्होंने अबशालोम के शव को वन में एक गहरे गड्ढे में डालकर उसके ऊपर पत्थरों का बहुत विशाल ढेर लगा दिया। सभी इसराइली सैनिक भाग गए, हर एक अपने अपने तंबू में। जब अबशालोम जीवित ही था, उसने राजा की घाटी नामक स्थान पर अपने लिए एक स्मारक खंभा बनवा दिया था। उसका विचार था, मेरे नाम की याद स्थायी रखने के लिए, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस स्मारक स्तंभ को उसने अपना ही नाम दिया। आज तक यह अबशालोम स्मारक के नाम से जाना जाता है। अबशालोम की मृत्यु और दाविद। यह सब होने पर सादोक के पुत्र अहिमाज ने विचार किया, मैं दौड़कर राजा को यह संदेश दूंगा कि यहावे ने उन्हें उनके शत्रुओं के सामर्थ्य से छुड़ाया है। मगर योआब ने उससे कहा, आज तुम कोई भी संदेश नहीं ले जाओगे, तुम किसी दूसरे दिन संदेश ले जाना, लेकिन तुम्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह राजकुमार की मृत्यु का समाचार है। वहां कूश देश का एक निवासी था। योआब ने आदेश दिया, तुमने जो कुछ देखा है उसकी सूचना जाकर राजा को दे दो। कूश देशवासियों ने झुककर योआब का अभिवादन किया और दौड़ पड़ा। सादोक के पुत्र अहिमाज ने योआब से दोबारा विनती की, कुछ भी हो मुझे भी उस कूश देश निवासी के पीछे जाने दीजिए। योआब ने उससे पूछा, मेरे पुत्र तुम क्यों जाना चाह रहे हो? इस समाचार को प्रेषित करने का तुम्हें कोई पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। कुछ भी हो, उसने उत्तर दिया, मैं तो जाऊंगा। तब योआब ने उसे उत्तर दिया, जाओ। तब अहिमास दौड़ पड़ा और मैदान में से दौड़ता हुआ उस कूश देश निवासी से आगे निकल गया। दाविद दो द्वारों के मध्य बैठे हुए थे, प्रहारी दीवार से चढ़कर द्वार पर बने छत पर पहुंच गया। जब उसने दृष्टि की तो उसे एक अकेला व्यक्ति दौड़ता हुआ नजर आया। प्रहारी ने पुकारते हुए राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने उससे कहा, यदि वह अकेला व्यक्ति है तो उसके मुख से आनंददायक संदेश ही सुना जाएगा। वह व्यक्ति निकट निकट आता गया। तब प्रहारी ने एक और व्यक्ति को दौड़ते हुए आते देखा। प्रहारी ने पुकारते हुए द्वारपाल को सूचित किया, देखो देखो, एक और व्यक्ति अकेला दौड़ा आ रहा है। राजा कहने लगा, वह भी आनंददायक संदेश ही ला रहा है। प्रहारी ने उन्हें बताया, मेरे विचार से प्रथम व्यक्ति के दौड़ने के ढंग से ऐसा लग रहा है कि वह सादोक का पुत्र अहिमाज है। यह सुन राजा ने कहा, वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह अवश्य ही शुभ संदेश ला रहा है। अहिमाज ने पुकार कर राजा से कहा, सब कुछ कुशल है। तब वह राजा के समक्ष भूमि पर दंडवत हो गया। उसने आगे कहा, स्तुत्य है यहावे, आपके परमेश्वर, जिन्होंने महाराज मेरे स्वामी के शत्रुओं को पराजित कर दिया है। राजा ने उससे पूछा, क्या युवा अबशालोम सकुशल है? अहिमाज ने उत्तर दिया, जब योआब ने आपके सेवक को महाराज के लिए संदेश के साथ प्रेषित किया था, तब मैंने वहां बड़ी अव्यवस्था देखी, मगर मुझे यह ज्ञात नहीं कि वह सब क्या था। तब राजा ने उसे आदेश दिया, आकर यहां खड़े रहो। तब वह जाकर वहां खड़ा हो गया। तब वह कूश देशवासी भी वहां आ पहुंचा। उसने सूचना दी, महाराज मेरे स्वामी के लिए खुशखबरी है, आज यहावे ने आपको विद्रोहियों पर जयंत किया है। यह सुनने के बाद राजा ने कूश देशवासियों से प्रश्न किया, युवा अबशालोम तो सकुशल है ना? कूशवासी ने उत्तर दिया, महाराज मेरे स्वामी के शत्रुओं की और उन सभी की नियति जो आपके हानि के कटिबंध हो जाते हैं वही हो जो उस युवा की हुई है। भावना से अभिभूत राजा नगर द्वार के ऊपर बने हुए कक्ष में जाकर शोक करने लगे। जब वह वहां जा रहे थे, उनके द्वारा उच्चारे गए ये शब्द सुने गए, मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र अबशालोम, उत्तम तो यह होता तुम्हारे स्थान पर मेरी ही मृत्यु हो जाती। अब शालोम मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। शमूएल की दूसरी पुस्तक, अध्याय 19। योआब को इसकी सूचना इस प्रकार दी गई, अपने राजा रो रोकर अबशालोम के लिए विलाप कर रहे हैं। तब उस दिन विजय का हर्ष सारी सेना के लिए विलाप में बदल गया, क्योंकि सेना को यह बताया गया था, महाराज अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं। उस दिन की जीत की खुशी गहरी उदासी में बदल गई थी। फलस्वरूप सैनिक नगर में चुपके चुपके ऐसे प्रवेश कर रहे थे मानो वे लज्जित होकर युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग आए हो। राजा अपना मुखमंडल ढांप कर ऊंची आवाज में रो रहे थे, मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। तब योआब ने उस कमरे में जाकर राजा से कहा, आज आपने अपने उन सभी अधिकारियों का मुख लज्जा से झुका दिया है जिन्होंने आपके और आपके पुत्र पुत्रियों, पत्नियों और उपपत्नियों के जीवन की रक्षा की है। आप उनसे तो प्रेम करते हैं जिन्हें आपसे प्रेम नहीं, और उनसे घृणा करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। आज आपने यह साफ कर दिया है कि आपकी दृष्टि में ना तो अधिकारियों का कोई महत्व है ना सैनिकों का। आज मुझे यह मालूम हो गया है कि आज यदि अबशालोम जीवित होता और हम सभी मृत, तो आपको अत्यंत हर्ष होता। अब ऐसा कीजिए, उठिए, बाहर आइए और अपने सैनिकों से सांत्वनापूर्ण शब्दों में बातें कीजिए, नहीं तो जीवित यहावे की शपथ, यदि आप यह न करेंगे, एक भी सैनिक आज रात आपके साथ देखा ना जाएगा। यह आपके लिए ऐसी किसी भी विपता से कहीं अधिक सोचने लायक होगा जो आपके बाल्यकाल से आज तक आप पर ना आन पड़ी है। तब राजा उठे और नगर द्वार पर जाकर बैठ गए। जब लोगों ने यह सुना, सुनो सुनो, राजा द्वार पर बैठे हुए हैं, तो लोग राजा के निकट आने लगे। इज़राइली अपने अपने घर भाग जा चुके थे। दाविद का यरूशलेम लौटना। इज़राइल के सारे गोत्रों में इस समय इस विषय पर उग्र विवाद छिड़ा हुआ था, राजा ही हमें हमारे शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करते आए हैं, वही हमें फिलिस्तीनियों से मुक्त करते आए हैं, अब वह अबशालोम के कारण देश छोड़कर भाग गए हैं। यहां हमने अबशालोम का राज अभिषेक किया और वह युद्ध में मारा गया, तब अब राजा को वापस लाने के बारे में कुछ क्यों नहीं किया जा रहा? राजा दाविद ने पुरोहित सादोक और अबियाथर के लिए यह संदेश भेजा, आप यहूदिया के पुरनियों से इस विषय में विचार विमर्श करें, राजा को उसके आवास में लौटा लाने के विषय में आप सबसे पीछे क्यों हैं, जबकि सारे इसराइल इस विषय में राजा तक अपने विचार भेज चुका है। आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप में और मुझ में लहू मांस का संबंध है, तब आप ही राजा की पुनर्स्थापना में पीछे क्यों हैं? अमासा से कहिए, क्या तुम मेरा लहू मांस नहीं हो? यदि योआब के स्थान पर तुम आज से ही स्थायी रूप से मेरी सेना के सेनापति का पद ग्रहण ना करो, तो मैं परमेश्वर के सामने दंड के योग्य रहूंगा। इस बात ने यहूदिया की जनता का हृदय एक सूत्र में बांध दिया। तब उन्होंने राजा के लिए यह संदेश भेजा, आप और आपके सारे सेवक यहां लौट आए। तब राजा लौटकर यरदन नदी तक पहुंचे। तब यहूदिया वासी गिलगाल नामक स्थान पर उनका स्वागत करते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें यरदन नदी के पार ले आए। बहुरीम नामक स्थान से बिन्यामीन के एक वंशज गेरा के पुत्र शिमेई यहूदिया के व्यक्तियों को लेकर शीघ्रतापूर्वक राजा दाविद से भेंट करने आ गए। उनके साथ बिन्यामीन वंश के 1000 व्यक्ति भी थे। उसी समय शाऊल का गृह प्रबंधक जीबा भी अपने 15 पुत्रों और 20 सेवकों के साथ ढलान पर यरदन नदी की ओर दौड़ता हुआ राजा से भेंट करने आया। उन्होंने राजा के परिवार को नदी पार करने में सहायता दी और उनकी सुविधाओं के लिए प्रयास करते रहे। राजा नदी पार करने पर ही थे कि गेरा का पुत्र शिमेई आकर राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने राजा से तेज आवाज में विनती की, मेरे स्वामी, ना तो मुझे दोषी ठहराए और ना ही मेरे उस गलत व्यवहार को याद रखे जो मैंने मेरे स्वामी महाराज के यरूशलेम से जाने के अवसर में किया था। महाराज इसे अपने हृदय में ना रखे। आपके सेवक को यह पता है कि मैंने यह पाप किया है, इसलिए यह देखिए, आज मैं ही सारे योसेफ वंश में से पहला हूं, जो महाराज मेरे स्वामी से भेंट करने आया हूं। जेरुया के पुत्र अभिशाई ने इसके लिए सुझाव दिया, क्या सही नहीं कि जो कुछ शिमई ने किया है उसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाए। उसने यहावे के अभिषिक्त को शाप दिया था। तब जेरुया के पुत्रों दाविद ने कहा, क्या लेना देना है मेरा तुम्हारा? क्या कारण है तुम आज मेरे विपरीत ही जा रहे हो? क्या आज वह दिन है जिसमें इज़राइल के किसी भी व्यक्ति को प्राण दंड दिया जाना सही होगा? क्या मुझे यह मालूम नहीं कि मैं इस समय इज़राइल का राजा हूं? तब शिमेई से उन्मुख हो राजा ने कहा, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। इसके लिए राजा ने उससे शपथ खाई। शाऊल का पुत्र मेफीबोशेत भी राजा से भेंट करने आया। जिस दिन से राजा ने पलायन किया था उस दिन से राजा के सुरक्षित लौटने तक उसने पैरों का ध्यान ना रखा था, ना अपनी दाढ़ी का प्रसाधन किया था और ना ही उसने धुले हुए कपड़े पहने थे। जब वह राजा से भेंट करने यरूशलेम में आया, राजा ने उससे कहा, मेफीबोशेत, पलायन करते समय तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसने उत्तर में कहा, महाराज मेरे स्वामी, मेरे सेवक ने मेरे साथ छल किया। आपके सेवक ने उससे कह रखा था, मैं अपने लिए गधे की काठी कसूंगा कि मैं उस पर चढ़कर राजा के निकट जा सकूं, क्योंकि मैं ठहरा अपंग। इसके अलावा उसने महाराज मेरे स्वामी से आपके सेवक के विरुद्ध झूठा आरोप भी प्रसारित कर दी। मगर महाराज मेरे स्वामी, आप परमेश्वर के स्वर्गदूत तुल्य हैं। आपको जो कुछ सही लगे आप वही करें। महाराज मेरे स्वामी के सामने मेरे पिता का वंश मृतकों के समान छोटा था, फिर भी आपने अपने सेवक को उनमें स्थान दिया जो आपके साथ भोजन करने के लिए चुने गए थे। महाराज से इससे अधिक अपेक्षा करने का मेरा अधिकार ही नहीं रह जाता। राजा ने उससे कहा, अब ज्यादा बोलने से क्या लाभ? मैंने यह निश्चय किया है कि तुम्हारे और ज़ीबा के बीच संपत्ति को बांट दिया जाएगा। मेफीबोशेत ने राजा से कहा, आप उसे संपूर्ण संपत्ति ही ले लेने दे। मेरे लिए यह काफी है कि महाराज मेरे स्वामी सुरक्षित लौट आए हैं। रेगेलिम नामक स्थान से गिलादवासी बारजिल्लै भी आए हुए थे। वह राजा के साथ साथ यर्दन नदी तक गए थे कि उन्हें यर्दन नदी पार उतार दे। बारजिल्लै बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, वह 80 वर्षीय थे। राजा के महानाइम पड़ाव के अवसर पर उन्हीं ने राजा की सुरक्षा का प्रबंध किया था, क्योंकि वहां वह अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा ने बारजिल्लै से कहा, आप मेरे साथ नदी पार कर चलिए। यरूशलेम में आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको आश्रय दूंगा। मगर बारजिल्लै ने राजा को उत्तर दिया, और कितने दिन बाकी है मेरे जीवन के कि मैं महाराज के साथ यरूशलेम चलूं? इस समय मेरी आयु 80 वर्ष की है। क्या मुझमें अब यह बोध रह गया है कि सुखद क्या है और क्या नहीं? क्या आपके सेवक में अब भोजन और पेय से संबंधित स्वाद बोध शेष रह गया है? अथवा क्या मैं अब भी स्त्री पुरुष गायक वृंद की प्रस्तुति सुनने में समर्थ रह गया हूँ? तब क्या लाभ है कि आपका सेवक महाराज मेरे स्वामी पर अतिरिक्त बोझ बनकर रहे? आपका सेवक महाराज के साथ मात्र यर्दन नदी पार ही करेगा, पर क्या आवश्यकता है कि महाराज प्रतिफल में यह पुरस्कार दें? कृपा कर अपने सेवक को लौटने की अनुमति प्रदान करें कि मेरा देहांत मेरे ही गृह नगर में मेरी माता पिता की कब्र के निकट ही हो। हाँ, यह किम हाम है, मेरा पुत्र आपका सेवक, उसे ही आज्ञा दे कि वह महाराज मेरे स्वामी के साथ जाए और आपकी उपयुक्त इच्छा पूर्ण करता रहे। राजा ने सहमति प्रदान की, किम हाम मेरे साथ अवश्य जाएगा और मैं उसके लिए वही करूँगा जो आपकी अभिलाषा है। साथ ही मैं आपके लिए भी वही करूँगा जो मुझसे आपकी इच्छा है। इसके बाद सभी यर्दन नदी के पार चले गए। राजा ने भी नदी पार की। तब राजा ने बारजिल्लै का चुंबन लेते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद बारजिल्लै अपने घर लौट गए। राजा गिलगाल की ओर बढ़ते गए। किम हाम राजा के साथ था। राजा के साथ यहूदिया की सभी सेना और इज़राइल की आधी सेना थी। तब इज़राइल के सभी व्यक्ति आकर राजा से कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ है कि हमारे भाई बंधुओं यहूदिया वासियों ने चुपके चुपके यरदन के उस पार जाकर राजा और उनके परिवार को और उनके सारे साथियों को यहां ले आए हैं। यहूदिया के सभी निवासियों ने इज़राइल के निवासियों को उत्तर दिया, इसलिए कि राजा हमारे निकट संबंधी है, इस पर क्रोध होने का क्या कारण है? क्या हमने अपने भोजन के लिए राजा की धनराशि में से खर्च किया है, अथवा क्या उन्होंने हमें उपहार में कुछ दिया है? यह सुन इज़राइलियों ने यहूदिया वासियों को उत्तर दिया, राजा में हमारे 10 अंश निहित है, तब दाविद पर हमारा अधिकार तुमसे अधिक होता ही है। तब तुमने हमें तुच्छ क्यों समझा? क्या राजा को दोबारा प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव सबसे पहले हमारी ओर से ही नहीं आया था? इसमें यहूदिया वासियों के वचन इज़राइलियों के उद्धारों से अधिक प्रभावी रहे। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 20। शेबा का विद्रोह। वहां बिन्यामीन वंश में से बिक्री नामक व्यक्ति का शीबा नामक निकम्मा पुत्र था। उसने तुरी फूकने पर यह घोषणा की, दाविद में हमारा कोई भाग नहीं है और ना येशे के पुत्र में कोई पैतृक संपत्ति। सुनो इज़राइल, लौट जाओ अपनी छावनी में। तब सभी इज़राइलियों ने दाविद का अनुसरण छोड़ दिया और बिक्री के पुत्र शीबा का अनुसरण शुरू कर दिया। मगर यहूदिया वासी यरदन नदी से यरूशलेम तक अपने राजा के साथ बने रहे। यरूशलेम पहुंचकर दाविद ने अपने राजमहल में प्रवेश किया। राजा ने उन 10 स्त्रियों को जो उनकी उपपत्नियां थीं, जिन्हें वह राजमहल की देखरेख के उद्देश्य से वहां छोड़ गए थे, एक पहरेदार की सुरक्षा में छोड़ दिया और उनके पालन पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। मगर अब उनसे कोई यौन संबंध ना रखा, वे मृत्यु होने तक विधवा समान इसी स्थिति में सीमित रह गई। तब राजा ने अमासा को आदेश दिया, 3 दिन के भीतर यहूदिया मेरे सामने इकट्ठा करो और तुम भी यहां रहना। तब अमासा यहूदिया के सैनिकों को इकट्ठा करने निकल पड़ा, मगर उसे निर्धारित समय से अधिक देर हो गई। तब दाविद ने अभिशाई से कहा, अब तो बिक्री का पुत्र शीबा अब शालोम की अपेक्षा हमारा कहीं अधिक नुकसान कर देगा। अपने स्वामी के सेवकों को लेकर उसका पीछा करो कि वह गढ़ नगरों में प्रवेश ना कर सके और हमसे छिप जाए। तब योआब के साथ उसका पीछा करने निकल पड़े। उनके साथ केरेथी, पेलेथी और अन्य शूर व्यक्ति भी। अभिशाई की अगुवाई में बिक्री के पुत्र शीबा का पीछा उन्होंने यरूशलेम से शुरू किया। जब वे गिबियोन के विशाल चट्टान के निकट आए, अमासा उनसे भेंट करने आ पहुंचा। इस समय योआब युद्ध के लिए तैयार थे। उनकी कमर में कमरबंद कसा हुआ था, उनकी जांघ पर म्यान में एक तलवार भी थी। जब वह आगे बढ़े, तलवार गिर पड़ी। योआब ने अमासा से कहा, मेरे भाई सब कुछ कुशल तो है? योआब ने यह कहते अमासा का चुंबन लेने के उद्देश्य से दाएं हाथ से उसकी दाढ़ी पकड़ी। इस समय अमासा का ध्यान उस तलवार पर ना था जो योआब के हाथ में थी। योआब ने अमासा के पेट में तलवार से ऐसा वार किया कि दूसरा वार किए बिना ही उसकी आंतड़ियां बाहर निकल भूमि पर आ गिरी कि उसकी मृत्यु हो गई। तब योआब और उनके भाई अभिशाई ने बिक्री के पुत्र शीबा का पीछा किया। योआब के एक युवा सैनिक ने अमासा के निकट खड़े होकर घोषणा की, जो कोई योआब के समर्थक है, जो कोई दाविद पक्ष में है, वह योआब का अनुसरण करें। अमासा इस समय प्रमुख मार्ग पर अपने रक्त में लौट रहा था। जब इस व्यक्ति ने देखा कि उस मार्ग से आते जाते सभी यात्री उसे देख वहीं ठहर जाते हैं, उसने अमासा को मार्ग पर से हटाकर खेत में रख दिया और उसे एक वस्त्र से ढांक दिया। जब मार्ग पर से अमासा को हटा दिया गया, तब सभी सैनिक बिक्री के पुत्र शीबा का पीछा करने योआब के साथ हो लिए। जब शीबा इज़राइल राज्य के हर एक प्रदेश को पार करता हुआ बेतमाका के आबेल पहुंचा, वहां सभी बिक्रीवासी इकट्ठा होकर उसके पीछे पीछे नगर में चले गए। योआब के सभी साथी सैनिक वहां आ गए और शीबा को बेतमाका के आबेल में घेरा डाल दिया। इसके लिए उन्होंने नगर की दीवार के किनारे मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर दिया। इसके बाद उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। तब एक नगर में से एक चतुर स्त्री ने पुकारते हुए कहा, सुनो सुनो, जाकर योआब से यह कहना, यहां आइए कि मैं आपसे बात कर सकूं। तब योआब वहां आए और उस स्त्री ने उनसे पूछा, क्या आप ही योआब हैं? हाँ मैं हूँ, योआब ने उत्तर दिया। तब उस स्त्री ने उनसे कहा, अपनी सेविका की सुन लीजिए। योआब ने कहा, मैं सुन रहा हूँ। तब उसने आगे कहा, कुछ समय पहले यह कहा जाता था, उन्हें यदि सलाह लेनी है तो सिर्फ आबेल ही से सलाह लो। इस प्रकार विवाद सुलझा लिया जाता था। हम उनमें से हैं जो इसराइल में शांति प्रिय और सच्चे माने जाते हैं। आप एक ऐसे नगर को नष्ट करने के लिए उठे हैं जो इसराइल की माता है। आप यहावे की मीरास को क्यों निगलना चाहते हैं? योआब ने उत्तर दिया, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा कि यह नगर नष्ट किया जाए। स्थिति ऐसी नहीं है, मगर एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र से बिक्री के शीबा नामक व्यक्ति ने राजा दाविद के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। बस आप उसे हमें सौंप दे और मैं यहां से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने योआब को उत्तर दिया, देखते रहिए, उसका सिर शहर पना से आपके सामने फेंका जाएगा। तब वह स्त्री अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण युक्ति के साथ नगर के सारी भीड़ के सामने पहुंची। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने बिक्री के पुत्र शीबा का सिर उड़ाकर योआब के सामने फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और वे उस नगर से विसर्जित होकर अपने अपने घर को लौट गए, जबकि योआब राजा के पास यरूशलेम लौट गए। दाविद के अधिकारी। अब योआब इसराइल की सारी सेना के प्रधान हो गए। केरेथियों और पेलेथियों के प्रधान यहोयादा के पुत्र बेनाइया थे। बेगार के मजदूरों के अधिकारी थे अदोरम। अहिलूद के पुत्र यहोशाफात लेखापाल थे। शेवा सचिव थे। सादोक और अब्याथर पुरोहित थे। और याइरवासी ईरा भी दाविद के पुरोहित थे। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 21। गिबियोन वासियों का बदला। दाविद के शासनकाल में 3 साल का अकाल पड़ा, लगातार 3 वर्ष के लिए। दाविद ने यहावे से इसका कारण जानने का प्रयास किया। यहावे ने उन्हें उत्तर दिया, शाऊल और उसके परिवार पर लहू का दोष है, उसने गिबियोन वासियों की हत्या की थी। इसलिए राजा ने बातचीत के लिए गिबियोन वासियों को आमंत्रित किया। एक सच यह था कि गिबियोन वासी इसराइल के वंशज नहीं बल्कि अमोरियों के बचे हुए भाग थे। इसराइलियों ने उन्हें सुरक्षा का वचन दे दिया था। शाऊल ने अपने उत्साह में भरकर इसराइल और यहूदा के वंशजों के हित में इन्हें समाप्त करने का प्रयास किया था। दाविद ने गिबियोन वासियों से पूछा, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इसकी भरपाई किस प्रकार करूँ कि आप लोग यहावे की मीरास के प्रति आशीर्वाद ही दें? यह सुन गिबियोन वासियों ने उत्तर दिया, शाऊल के परिवार से हमें ना तो स्वर्ण की अपेक्षा है, ना चांदी की, ना ही हमारी इच्छा यह है कि इसराइल के किसी भी व्यक्ति की हत्या करें। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ तुम चाहो करने के लिए तैयार हूँ। यह सुन उन्होंने राजा से कहा, जिस व्यक्ति ने हमारा जीवन नाश कर दिया, जिसने हमें मिटाने की युक्ति की कि हम इसराइल देश की सीमा के भीतर देखे ना जाए, उसके वंशजों में से हमें 7 पुरुष सौंपे जाए कि हम उन्हें यहावे के चुने हुए शाऊल के गिबिया में ले जाकर यहावे के सामने प्राण दंड दें। राजा ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा। मगर राजा ने यहावे के सामने अपनी प्रतिज्ञा के कारण शाऊल के पुत्र योनातन के पुत्र मेफीबोशेत को सुरक्षा प्रदान की। मगर राजा ने इसके लिए अय्या की पुत्री रिस्पा के अर्मोनी और मेफीबोशेत नामक 2 पुत्रों को, जो उसे शाऊल से पैदा हुए थे, और शाऊल की पुत्री मेरब के 5 पुत्रों को, जो उसे मेहोली बारजिल्लई के पुत्र आद्रियल से पैदा हुए थे, गिबियोन वासियों को सौंप दिया। इन्हें उन्होंने यहावे के सामने उस पर्वत पर प्राण दंड दिया, इससे उसी समय सातों की मृत्यु हो गई। यह प्राण दंड कटनी के शुरुआती दिनों दिया गया था, जो कि कटनी के शुरुआत में। इस घटना के कारण अय्या की पुत्री रिस्पा ने चट्टान पर अपने लिए मोटे कपड़े का आसरा बना लिया और वह इसमें कटनी के शुरुआती दिनों से बारिश होने तक रही। वह ना तो दिन में पक्षियों को शवों के निकट आने देती थी, ना रात में जंगली पशुओं को। जब दाविद को अय्या की पुत्री शाऊल की उपपत्नी रिस्पा के इस काम की सूचना दी गई, तब दाविद ने शाऊल और योनातन की अस्थियां याबेश गिलाद के लोगों से ले ली। ये अस्थियां याबेश गिलाद वासियों ने बेत शान के नगर चौक से चुरा ली थी। फिलिस्तीनियों ने शाऊल की हत्या के बाद उसी दिन वहां टांग दिया था। दाविद ने शाऊल और उनके पुत्र योनातन की अस्थियां ले जाकर उनकी अस्थियों को साथ इकट्ठा कर दी, जो यहां टांगे गए थे। फिर उन्होंने बिन्यामीन के सेला नामक स्थान पर शाऊल और उनके पुत्र योनातन की अस्थियों को शाऊल के पिता कीश की कब्र में रख दिया। सभी कुछ राजा के आदेश के अनुसार किया गया। यह सब पूरा हो जाने पर परमेश्वर ने देश की दोहाई का उत्तर दिया। फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध। फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच दोबारा युद्ध छिड़ गया। दाविद अपनी सेना लेकर गए और उनसे युद्ध किया। युद्ध करते हुए दाविद थक गए। शत्रु सेना में इशबी बेनोब नामक दानवों का एक वंशज था, जिसके भाले का तोल लगभग 3.5 किलो था। उसने एक नई तलवार धारण की हुई थी। उसने दाविद की हत्या करने की साजिश की, मगर जेरुया का पुत्र अभिशाई दाविद की सहायता के लिए आ गया। उसने फिलिस्तीनी पर हमला किया और उसका वध कर दिया। दाविद के सैनिकों ने उनसे शपथ ली कि वह अब से युद्ध भूमि में नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल वंश का दीप ही बुझ जाए। इसके बाद गोब नामक स्थान पर फिलिस्तीनियों से दोबारा युद्ध छिड़ गया। हुशाती शिबेकाई ने साफ को मार दिया, यह भी दानवों का वंशज था। एक बार फिर गोब नामक स्थान पर ही फिलिस्तीनियों से युद्ध छिड़ गया। बेथलेमवासी जारे ओरेगीम के पुत्र एलहानन ने गाथवासी गोलियत को मार गिराया। उसका भाला बुनकर की धरनी के समान विशाल था। उसके बाद गात में एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। वहां एक बहुत ही विशाल डीलडोल का आदमी था, जिसके हाथों और पांव में 6-6 उंगलियां थी, पूरी 24। वह भी दानवों के वंश का था। जब उसने इसराइल को चुनौती देने शुरू किए, दाविद के भाई सीमा के पुत्र योनातन ने उसको मार दिया। ये चारों गात नगर में दानवों का ही वंशज था। वे दाविद और उनके सेवकों द्वारा मार गिराए गए। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 22। दाविद रचित आभार गान। जब यहावे ने दाविद को उनके शत्रुओं तथा शाऊल के आक्रमण से बचा लिया था, तब दाविद ने यह गीत यहावे के सामने गाया। दाविद ने कहा, यहावे मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाले हैं। मेरे परमेश्वर जिनमें मैं आसरा लेता हूँ मेरे लिए चट्टान है। वह मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सींग है। वह मेरा गढ़, मेरी शरण और मेरा छुड़ाने वाला है, जो कष्टों से मेरी रक्षा करते हैं। मैं दोहाई यहावे की देता हूँ, सिर्फ वही स्तुति के योग्य है, और मैं शत्रुओं से छुटकारा पा लेता हूँ। मृत्यु की लहरों में घिर चुका था, मुझ पर विध्वंस की तेज धारा का वार हो रहा था। अधोलोक के तंतुओं ने मुझे उलझा लिया था, मैं मृत्यु के जाल के आमने सामने आ गया था। अपनी वेदना में मैंने यहावे की दोहाई दी, मैंने अपने ही परमेश्वर को पुकारा। अपने मंदिर में उन्होंने मेरी आवाज सुन ली, उनके कानों में मेरा रोना जा पड़ा। पृथ्वी झूलकर कांपने लगी, आकाश की नींव थर थरा उठी और कांपने लगी, क्योंकि वह क्रोध थे। उनके नथनों से धुआं उठ रहा था, उनके मुख की आग चट करती जा रही थी। उसने कोयलों को दहका रखा था, उन्होंने आकाशमंडल को झुकाया और उतर आए। उनके पैरों के नीचे घना अंधकार था। वह करूब पर चढ़कर उड़ गए, वह हवा के पंखों पर चढ़कर उड़ गए। उन्होंने अंधकार ओढ़ लिया, वह उनका छाता बन गया। घने काले वर्षा के मेघ में घिरे हुए उनके सामने के तेज से कोयलों में आग जल गई। स्वर्ग से यहावे ने गर्जन की और परम प्रधान ने अपने शब्द सुनाए। उन्होंने बाण छोड़े और उन्हें बिखरा दिया, बिजलियों ने उनके पैर उखाड़ दिए। यहावे की प्रताड़ना से, नथुनों से, उनके सांस के झोंके से सागर के जलमार्ग दिखाई देने लगे, संसार की नींव खुल गई। उन्होंने स्वर्ग से हाथ बढ़ा, मुझे थाम लिया, प्रबल जल प्रवाह से उन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया। उन्होंने मुझे मेरे प्रबल शत्रु से मुक्त किया, उनसे जिन्हें मुझसे घृणा थी वे मुझसे कहीं अधिक शक्तिमान थे। संकट के दिन उन्होंने मुझ पर आक्रमण कर दिया था, किंतु मेरी सहायता यहावे में मगन थी। वह मुझे खुले स्थान पर ले आए, मुझसे अपनी प्रसन्नता के कारण उन्होंने मुझे छुड़ाया है। मेरी भलाई के अनुसार ही यहावे ने मुझे प्रतिफल दिया है, मेरे हाथों की स्वच्छता के अनुसार उन्होंने मुझे इनाम दिया है। मैं यहावे की नीतियों का पालन करता रहा हूँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई दुराचार नहीं किया है। उनके सारे नियम मेरे सामने बने रहे, उनके नियमों से मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ। मैं उनके सामने निर्दोष बना रहा, दोष भाव मुझसे दूर ही दूर रहा। इसलिए यहावे ने मुझे मेरी भलाई के अनुसार ही प्रतिफल दिया है, उनकी नज़रों में मेरी शुद्धता के अनुसार। सच्चे लोगों के प्रति आप स्वयं विश्वास योग्य साबित होते हैं, निर्दोष व्यक्ति पर आप स्वयं को निर्दोष ही प्रकट करते हैं। वह जो निर्मल है उस पर अपनी निर्मलता प्रकट करते हैं, कुटिल व्यक्ति पर आप अपनी चतुरता प्रकट करते हैं। विनम्र व्यक्ति को आप छुटकारा प्रदान करते हैं, मगर आपकी दृष्टि घमंडियों पर लगी रहती है कि कब उसे नीचा किया जाए। यहावे आप मेरे दीपक हैं, यहावे मेरे अंधकार को ज्योतिर्मय कर देते हैं। जब आप मेरी ओर है तो मैं सेना से टक्कर ले सकता हूँ, मेरे परमेश्वर के कारण मैं दीवार तक फांद सकता हूँ। यह वह परमेश्वर है जिनकी नीतियाँ खरी हैं। ताया हुआ है यहावे का वचन अपने सभी शरणागतों के लिए, वह ढाल बन जाते हैं। क्योंकि यहावे के अलावा कोई परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर के अलावा कोई चट्टान है, वही परमेश्वर मेरे मजबूत आसरा है। वह निर्दोष व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलाते हैं, उन्हीं ने मेरे पांव को हिरन के पांव के समान बना दिया है। ऊंचे स्थानों पर वह मुझे सुरक्षा देते हैं, वह मेरे हाथों को युद्ध की क्षमता प्रदान करते हैं कि अब मेरी बाहें कांसे के धनुष तक को इस्तेमाल कर लेती हैं। आपने मुझे छुटकारे की ढाल दी है, आपकी सहायता ने मुझे विशिष्ट पद दिया है। मेरे पांव के लिए आपने चौड़ा रास्ता दिया है, इसमें मेरे पगों के लिए कोई फिसलन नहीं है। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा कर उन्हें नाश कर दिया है, जब तक वे पूरी तरह नाश ना हो गए मैं लौट कर नहीं आया। मैंने उन्हें ऐसा पूरी तरह कुचल दिया कि वे पुनः सिर ना उठा सके, वे तो मेरे पैरों में आ गिरे। शक्ति से आपने मुझे युद्ध के लिए सशस्त्र बना दिया, आपने उन्हें जो मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए थे मेरे सामने झुका दिया। आपने मेरे शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया, जो मेरे विरोधी थे मैंने उन्हें नष्ट कर दिया। वे आशा जरूर करते रहे मगर उनकी रक्षा के लिए कोई भी ना आया, यहां तक कि उन्होंने यहावे की भी दोहाई दी मगर उन्होंने भी उन्हें उत्तर ना दिया। मैंने उन्हें पीसकर भूमि की धूल के समान बना दिया, मैंने उन्हें कुचल दिया, मैंने उन्हें गली के कीचड़ के समान रौंद डाला। आपने मुझे सजातियों के द्वारा उठाए कलह से छुटकारा दिया है, आपने मुझे सारे राष्ट्रों पर सबसे ऊपर बनाए रखा। अब वे लोग मेरी सेवा कर रहे हैं जिनसे मैं पूरी तरह अपरिचित हूँ। विदेशी मेरे सामने झुकते आए, जैसे ही उन्हें मेरे विषय में मालूम होते ही वे मेरे प्रति आज्ञाकारी हो गए। विदेशियों का मनोबल जाता रहा, वे कांपते हुए अपने गढ़ों से बाहर आ गए। जीवित है यहावे, धन्य है मेरी चट्टान, मेरे छुटकारे की चट्टान, मेरे परमेश्वर प्रतिष्ठित हो। परमेश्वर जिन्होंने मुझे प्रतिफल दिया, मेरा बदला लिया, और जनताओं को मेरे अधीन कर दिया, जो मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करते हैं। आपने मुझे मेरे शत्रुओं के ऊपर ऊंचा किया है, आपने हिंसक पुरुषों से मेरी रक्षा की है। इसलिए यहावे, मैं राष्ट्रों के सामने आपकी स्तुति करूंगा, आपके नाम का गुणगान करूंगा। अपने राजा के लिए वही है छुटकारे का खंभा, अपने अभिषिक्त पर दाविद और उनके वंशजों पर वह हमेशा अपार प्रेम प्रकट करते रहते हैं। शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 23। दाविद द्वारा मुखरित अंतिम उद्धार। यह दाविद द्वारा भेजा उनका आखिरी वचन है। यिशै के पुत्र दाविद की यह घोषणा है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा उन्नत किया गया, वह घोषणा कर रहा है याकोब के परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त इज़राइल का लोकप्रिय मधुर संगीतकार, यहावे के आत्मा मेरे द्वारा बातें करते रहे हैं, उनका संदेश मेरी जीभ पर रहता था। इज़राइल के परमेश्वर ने, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे कहा, वह जो मनुष्यों पर न्याय के साथ शासन करता है, परमेश्वर की श्रद्धा में शासन करता है। वह सुबह की आभा के समान है जब सूर्योदय हो रहा होता है, ऐसी सुबह जो बादलों से छाई हुई, जब भूमि से बारिश के बाद कोमल घास सूर्य प्रकाश में भूमि से अंकुरित होने लगती है। क्या यह तथ्य नहीं कि मेरे वंश के विषय में परमेश्वर की यही मान्यता है? क्योंकि उन्होंने मुझसे सदा की वाचा स्थापित की है, हर एक पक्ष में सुव्यवस्थित और सुरक्षित। क्या वह मेरे उद्धार और अभिलाषा को उन्नत ना करेंगे? निकम्मे व्यक्ति फेंक दी गई कटीली झाड़ी के समान है, उन्हें हाथों से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इन्हें इकट्ठा करने का काम करता है, वह लोहे के दंड और भाले की छड़ को लेकर आता है, तब उन्हें आग में भस्म किया जा सकता है। दाविद के शूर योद्धा। दाविद द्वारा सेना में शामिल वीर योद्धाओं के नाम। तहकेमोन वासी योशेब बशेबेत, वह तीन सेनापतियों में प्रमुख था। उसने अपने भाले से एक ही समय में 800 शत्रुओं का संहार किया था। इन तीन शूरवीरों में दूसरा पद था अहोही के पुत्र दोदो के पुत्र एलियाजर का। वही उसी समय दाविद के साथ था जब वे युद्ध के लिए मोर्चा बांधे फिलिस्तीनियों की ओर बेधड़क आगे बढ़ते गए, जबकि इजरायली सेना पीछे हट चुकी थी। आगे बढ़कर उसने फिलिस्तीनियों का संहार करना शुरू कर दिया, जब तक उसके हाथ थक न गए। उसका हाथ मानो तलवार से चिपक गया था। उस दिन यहावे द्वारा प्रदान की गई विजय अद्भुत थी। इसके बाद सैनिक वहां आए अवश्य, मगर सिर्फ मृतकों की सामग्री लूटने। इसके बाद नामित है हरारी यगी का पुत्र शम्मा फिलिस्तीनी सेना लेही नामक स्थल पर मोर्चा बांधे एकत्र थी। वहां मतूर का खेत था, लोग फिलिस्तीनियों से डरकर भाग रहे थे। उसने खेत के बीच में रहते हुए उनका सामना किया, उस खेत की रक्षा करते रहे और फिलिस्तीनियों को मार गिराया। यहावे ने बड़ी जीत के द्वारा उनकी रक्षा की। कटनी के अवसर पर चट्टान में अदुल्लाम गुफा में 30 प्रमुख अधिकारियों में से 3 दाविद से भेंट करने गए। इस समय रेफाइम के फिलिस्तीनी सेना घाटी में शिविर डाले हुए थे। इस समय दाविद गढ़ में थे और फिलिस्तीनी सेना बेथलेम में। बड़ी इच्छा से दाविद कह उठे, कैसा सुखद होता अगर कोई बेथलेम फाटक के पास के कुएं से मुझे पीने के लिए पानी ला देता। यह सुन ये तीन वीर योद्धा फिलिस्तीनियों के शिविर में से बचते बचाते जाकर उस कुएं से जो बेथलेम के द्वार के निकट था दाविद के लिए जल ले आए। मगर दाविद ने वह जल पिया नहीं, उन्होंने उसे यहावे के सामने उंडेल दिया। उन्होंने कहा, यहावे मुझसे यह काम कभी ना हो, क्या यह जल इन वीरों का लहू समान नहीं जो अपने प्राण जोखिम में डाल मेरे लिए यह लाए है? इसलिए दाविद ने वह जल नहीं पिया, ऐसे साहसिक थे इन वीरों के कार्य। जेरुया का पुत्र योआब का भाई अभिशाई 30 सैनिकों पर अधिकारी था। उसने 300 पर अपनी बर्छी घुमाई और उनको मार गिराया। उसने भी उन तीनों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त की। तीसों में वही सबसे अधिक प्रख्यात था, वही उनका प्रधान बन गया, मगर वह उन तीनों में से एक ना था। कब्जियल के एक वीर के पोते यहोयादा के पुत्र बेनाइया ने बड़े बड़े काम किए थे। उसने मोआब के अरियेल के दो पुत्रों को मार गिराया। उसने ही उस दिन जब बर्फ गिर रही थी जाकर एक गड्ढे में बैठे सिंह का वध किया था। उसने एक बड़ा सा मिस्री का भी वध किया। उस मिस्री के हाथ में भाला अवश्य था, मगर बेनाइया ने जाकर अपनी छड़ी से उसके भाले को उससे छीन लिया और उस मिस्र का वध उसी के भाले के कर दिया। यहोयादा के पुत्र बेनाइया ने ये सारे काम किए और उन तीन वीरों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह उन तीसों में ही प्रख्यात हुआ, मगर उन तीनों के तुल्य नहीं। दाविद ने उसे अपने अंगरक्षक का अधिकारी नियुक्त कर दिया। 30 योद्धाओं के समूह में अन्य व्यक्ति ये थे: योआब का भाई आसाहेल, बेथलेम के दोदो का पुत्र एलहानन, हेरोदी शम्मा, हेरोदी एलीका, पेलेती हेलेस, तकोवा निवासी इकेश का पुत्र ईरा, अनाथोती अबियेजर, हुशाथी मबुन्ने, अहोही सलमोन, नेतोफाही महराई, नेतोफाही के बहना का पुत्र हेलेब, गिबिया के बिन्यामीन परिवार समूह, रिबाई का पुत्र इथाई, पिराथोनी बेनाइया, गाश के नालों का हिद्धे, अरबातवासी अबियलबोन, बहुरीमी अजमावेत, शालबोनी एली अहाब, याशेन के पुत्र योनातन, हरारी शम्मा का पुत्र अरारी शारार का अहियम, माकाहाती का अहसबे का पुत्र एलीफेलेत, गिलोई अहितोफेल का पुत्र एलियाम, कर्मेली हेसरो, अराबी पारे, जोबा के नाथान का पुत्र येगाल, गादबानी, अमोनवासी सेलेक, बिरोथवासी नहराई, जो जेरुया के पुत्र योआब का हथियार उठाने वाला था, इथरी ईरा, इथरी गारेब और हित्ती उरिया, सब मिलकर ये 37 थे। शमूएल की दूसरी पुस्तक, अध्याय 24। दाविद जनगणना कराता है। इज़राइल के विरुद्ध यहावे का क्रोध एक बार फिर भड़क उठा। उन्होंने दाविद को ही इज़राइल के विरुद्ध कर दिया। उन्होंने दाविद को उकसाया, इज़राइल और यहूदिया की गिनती करो। तब राजा ने सेना के आदेशक योआब और उनके सहयोगियों को आदेश दिया, दान से लेकर बेशरबा तक जाकर इज़राइल के सारे गोत्रों की जनगणना करो कि मुझे जनसंख्या का पता चल सके। मगर योआब ने राजा से कहा, जब तक आपकी आंखों में ज्योति है, यहावे आपके परमेश्वर वर्तमान जनसंख्या की 100 गुना वृद्धि करे, मगर महाराज मेरे स्वामी ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? मगर राजा के आदेश के आगे योआब और अन्य प्रधानों का तर्क विफल ही रहा। तब योआब और सेना के प्रधान संसद भवन से निकलकर इज़राइल की जनगणना के लिए चल पड़े। उन्होंने यर्दन नदी पार कर अरोवर नामक स्थान पर शिविर डाले। यह स्थान याजर की ओर गाद की तराई के बीच में है। इसके बाद वे गिलाद आ गए और हित्तियों के क्षेत्र के कादेश में। तब वे दान यान पहुंचे। दान यान के बाद वे सीदोन के निकट जा पहुंचे। फिर वे सोर के गढ़ पहुंचे, जहां से उन्होंने हिव्वियों और कनानियों के सभी नगरों में गिनती पूरी की। इसके बाद वे बेशरबा में यहूदिया के नेगेव पहुंचे। जब वे संपूर्ण देश में गिनती का काम पूरा कर चुके, वे यरूशलेम आ गए। अब तक 9 महीने और 20 दिन पूरे हो चुके थे। योआब ने राजा के सामने राज्य की जनगणना का लेखा प्रस्तुत किया। इज़राइल में 800,000 वीर योद्धा थे और यहूदिया में 500,000, जिनमें तलवार के कौशल की क्षमता थी। जनगणना के परिणाम स्पष्ट होते ही दाविद का मन उन्हें कचोटने लगा। सुबह जागने पर दाविद ने यहावे से कहा, यह करके मैंने घोर पाप किया है, मगर यहावे अपने सेवक का अपराध दूर कर दीजिए, क्योंकि यह मेरी बड़ी मूर्खता थी। सुबह जागने पर दाविद को यहावे का यह संदेश भविष्यद्वक्ता गाद को भेज दिया गया। वह दाविद के लिए नियुक्त दर्शी थे। जाओ और दाविद से यह कहो, यहावे का यह संदेश है, मैं तुम्हारे सामने 3 विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं, इनमें से तुम एक चुन लो कि मैं उसे तुम पर इस्तेमाल कर सकूं। तब गाद दाविद के सामने आए और उनसे यह कहा, क्या तुम्हारे देश में 3 वर्ष के लिए अकाल भेजा जाए या तुम 3 महीने तक उन शत्रुओं से बचकर भागते रहो जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, या क्या देश में 3 दिन की महामारी हो। अब विचार करके निर्णय करो कि मैं अपने भेजने वाले को उत्तर दे सकूं। तब दाविद ने गाद को उत्तर दिया, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, हमें यहावे के हाथ से दिया गया दंड ही सहने दीजिए, क्योंकि अपार है उनकी कृपा, मुझे किसी मनुष्य के हाथ में ना पड़ने दे। तब यहावे ने उस समय से तय अवधि तक के लिए इसराइल देश पर महामारी भेज दी। दान से बेशरबा तक 70,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जब विनाशक स्वर्गदूत ने यरूशलेम को ध्वस्त करने के उद्देश्य से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, यहावे ने विनाश का विचार त्याग दिया। उन्होंने उस स्वर्गदूत को जो मनुष्यों को मार रहा था कहा, बस करो, अब अपना हाथ रोक दो। इस समय स्वर्गदूत यबूसी ओर्नन के खलिहान के निकट था। जब दाविद ने मनुष्यों का संहार कर रहे स्वर्गदूत को देखा, उन्होंने यहावे को संबोधित कर कहा, पाप सिर्फ मैंने किया है, सिर्फ मैं ही हूं अपराधी, मगर ये भेड़े क्या दोष है उनका। आपका यह दंड देता हुआ हाथ मुझ पर और मेरे पिता के परिवार के विरुद्ध उठने दीजिए। दाविद वेदी बनाता है। तब गाद उसी दिन दाविद के पास पहुंचे और उन्हें आदेश दिया, यबूसी ओर्नन के खलियान में जाकर यहावे के लिए वेदी बनाओ। दाविद ने गाद का आदेश पालन कर वैसा ही किया जैसा यहावे ने उन्हें आदेश दिया था। जब ओर्नन ने दृष्टि की तो यह देखा कि राजा और उनके सेवक उसी की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। ओर्नन ने जाकर दंडवत हो उनको नमस्कार किया। ओर्नन ने विनती की, क्या कारण है कि महाराज मेरे स्वामी को इस सेवक के यहाँ आने की आवश्यकता हुई है। दाविद ने उत्तर दिया, तुमसे खलिहान खरीदने कि मैं यहावे के लिए वेदी बना सकूं, तब बीमारी रुक जाएगी। यह सुन ओर्नन ने दाविद से कहा, महाराज मेरे स्वामी को जो कुछ सही लगे ले ले और भेंट चढ़ा दे। अग्नि बलि के लिए ये बैल है और बलि के लिए आवश्यक लकड़ी के लिए भूसी निकालने के ये हथियार और जुआ प्रस्तुत है। महाराज यह सब ओर्नन महाराज को भेंट में प्रस्तुत कर रहा है। ओर्नन ने राजा से यह भी कहा, यहावे आपके परमेश्वर आपको स्वीकार करे। मगर राजा ने ओर्नन को उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें इनका मूल्य देकर ही इन्हें स्वीकार करूंगा। मैं यहावे मेरे परमेश्वर को ऐसी भेंट नहीं चढ़ा सकता जिसका मैंने मूल्य नहीं चुका दिया है। दाविद ने चांदी के 50 मुद्राएं देकर खलियान और बैल मोल ले लिए। दाविद ने वहां यहावे के निमित्त वेदी बनाई और उस पर अग्नि बलि और मेल बलियां चढ़ाई। तब यहावे ने देश के लिए इस प्रार्थना को स्वीकार किया जिससे इसराइल देश से महामारी जाती रही।